गुप्त जी ने माइकल मधुसूदन दत्त के मेघनाथ वध, विरहिणी ब्रजांगना और वीरांगना का अनुवाद किया। यह नवीन के प्रति उनकी अभिरुचि का प्रमाण है। माइकल की अभिरुचियों के साथ उनका तालमेल नहीं बैठता। मधुसूदन दत्त ने भी अपने काव्य के लिए अतीत की कथाएं चुनी हैं, पर उनके आदर्शों को आश्चर्यजनक ढंग से उलट दिया है। उनका विद्रोह और तीखापन आज भी पुराने ढंग के विचारकों के गले से नीचे नहीं उतरता। दत्त केवल विषय वस्तु और दृष्टि में ही विप्लवी नहीं है, बल्कि काव्य शैली में भी क्रांतिकारी हैं। गुप्त जी की काव्य रूढ़ी पुरानी है, पर उस पर रंग नया है और जो कुछ नया है उसका मूलाधार पुराना है। वे काव्य में रस, अनुभव, काव्य गुण, छंद निर्वाह पर ध्यान देने के आग्रही हैं। श्रृंगार रस के अंतर्गत दाम्पत्य प्रेम की अभिव्यक्ति तक ही वे अपने को सीमित रखते हैं। उनके काव्य का प्रयोजन है लोकहित, मनुष्य के मन में सद्भावों का संचार, ज्ञान का प्रकाश। अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए वे उत्कृष्ट विषयों का चयन करते हुए उन्हें अपनी समसामयिक समस्याओं से संदर्भित करते हैं। गुप्त जी जिस राष्ट्रीय चेतना को लेकर काव्य क्षेत्र में अवतीर्ण हुए, वह भारतेंदु तथा उनके समसामयिक कवियों की काव्य चेतना से किंचित भिन्न है। उस समय के कवि करुणा विगलित स्वर में या तो करुणा निधि केशव को जगा रहे थे, या अपने अतीत गौरव का स्मरण कर गंगा यमुना से मथुरा काशी को डुबो देने की प्रार्थना करते थे। चित्तौड़ को अपने समसामयिक संदर्भ में रखकर उनके मन में मायूसी छा जाती थी, किंतु गुप्त जी के प्रथम काव्य रंग में भंग 1909 में चित्तौड़ का स्मरण दूसरे ढंग से किया गया है। आज भी चित्तौड़ का सुन नाम कुछ जादू भरा, चमक जाती चंचला सी चित्त में करके त्वरा। अंधकार में बिजली की चमक क्षण भर के लिए ही सही प्रकाश बिखेर जाती है और चित्त को बेचैन बना देती है। इस संदर्भ में जयद्रथ वध 1910 और भारत भारती 1912 जो रंग में भंग के बाद लिखी गई भी विचारणीय है। दोनों की आरंभिक पंक्तियां हैं, फिर पूर्वजों की शिक्षा तरंगों में बहो। जयद्रथ वध, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे, अभी आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। भारत भारती से कवि पूर्वजों की दिव्य झांकी प्रस्तुत करते हुए उनसे शिक्षा ग्रहण करने का संदेश देता है और हमें भूत, वर्तमान और भविष्य के संबंध में विचार करने के लिए प्रेरित करता है। रंग में भंग में बूंदी का हाड़ा चित्तौड़ के महाराणा के प्रतिज्ञा पालन के निमित्त बने बूंदी के कृत्रिम दुर्ग को तब तक नहीं तोड़ने देता जब तक उसके शरीर में प्राण शेष था। मातृभूमि की प्रतिमा के प्रति भी यह निर्व्याज ममता इस युग के लिए भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। जयद्रथ वध में अभिमन्यु उस युवा पीढ़ी का प्रतिनिधि है जो राष्ट्रीय यज्ञ में महारथियों के अभेद्य चक्र की चिंता न करते हुए अपनी बलि चढ़ा देती है। भारत भारती तो उस समय की राष्ट्रीय भावना की सीसीमोग्राफ है। इसे लिखने की प्रेरणा उन्हें मुसद्दसे हाली और कैफी के भारत दर्पण से मिली। पहली में मुसलमानों के सांस्कृतिक जागरण की अभिव्यक्ति की गई है और दूसरी में हिंदुओं के सांस्कृतिक उत्थान की। गुप्त जी ने सैली हाली से ली और जमीन कैफी से। इसमें तत्कालीन राष्ट्रीय चेतना वर्तमान की हीन भावना के संदर्भ में अतीत का गौरव और प्रकारांतर से भविष्य का संकेत चित्र है। इसमें हिंदू जातीयता की गंध खोजने वालों को जानना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय चेतना का प्रारंभिक स्रोत हिंदू धर्म की पुनरुत्थानवादी भावना ही है। छायावाद के पूर्व तक इसकी प्रगतिशीलता असंदिग्ध बनी रही। सरल, सुबोध और इतिवृत्तात्मक शैली में समसामयिक जीवन को खड़ी बोली में बांधकर इसकी अभिव्यक्ति क्षमता और छंद संगीत को इस ढंग से उजागर किया गया कि शिक्षित युवा वर्ग पर इसका उद्बोधनात्मक प्रभाव पड़ा। समसामयिक चेतना के प्रति अत्यधिक आग्रह ने इसकी काव्यात्मक क्षमता को बहुत कम कर दिया, किंतु खड़ी बोली की काव्यात्मक संभावनाओं का द्वार उन्मुक्त हो गया। इस ढंग पर लिखा गया हिंदू उनका दूसरा काव्य है जो हिंदुओं के जागरण तक सीमित होने के कारण समादृत नहीं हो सका। राजा प्रजा में जो बात की रचना है, लोकतंत्र और उसके उज्जवल पक्ष को संवाद शैली में प्रस्तुत किया गया है। यह उनकी कालानुसारी चेतना का सबूत है। एक छोर पर भारत भारती में अविकसित राष्ट्रीय चेतना, जिसे उदार दल का भावबोध कहा जा सकता है, चित्रित हुई है, तो दूसरे छोर पर राष्ट्रीयता का पूर्ण विकास लोकतंत्र के आधार पर उनके माध्यम से गुप्त जी की अपनी राजनीतिक चेतना के साथ साथ पूरे युग की राजनीतिक चेतना का विकास देखा जा सकता है। 1931 में प्रकाशित साकेत उनकी काव्य चेतना की चरमोपलब्धि है। भारत भारती और साकेत के प्रकाशन के मध्यवर्ती काल में शकुंतला, पत्रावली, वैतालिक, किसान, अनघ, पंचवटी, स्वदेश संगीत, हिंदू, त्रिपथगा, शक्ति, विकट भट्ट, गुरुकुल और झंकार के प्रकाशन हुए। पंचवटी और झंकार को छोड़कर शेष रचनाओं में कवि भावनात्मकता से मुक्त नहीं हो पाया है। अधिकांश रचनाओं में वह समसामयिक राजनीतिक विचारों का वैतालिक दिखाई पड़ता है। साकेत गुप्त जी का सर्वश्रेष्ठ काव्य है। इसमें अपने युग के जीवन को समग्रता चित्रित करने का प्रयास किया गया है। यह दूसरी बात है कि उनका युगबोध सामान्यतः सतह का ही है। इसमें द्विवेदी युगीन नीतिमत्ता, आदर्श पुनरुत्थानवादी, सांस्कृतिक चेतना, मानवतावादी मान आदि को प्रत्यक्षतः देखा जा सकता है। साकेत रचना की मूल प्रेरणा उन्हें महावीर प्रसाद द्विवेदी के एक लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से मिली, जो सरस्वती 1908 की जुलाई में भुजंग भूषण भट्टाचार्य के छद्म नाम से छपा था। स्वयं द्विवेदी जी का लेख रविन्द्रनाथ टैगोर के लेख काव्य की उपेक्षिताएं से प्रभावित था। द्विवेदी जी ने लिखा था, खेत की बात है कि उर्मिला का उज्जवल चरित्र चित्र कवियों के द्वारा आज तक उसी तरह ढकता आया। इससे अनुप्रेरित होकर उर्मिला विषय कई काव्य लिखे गए। हरिओध ने उर्मिला, नवीन से विस्मृता उर्मिला, गुप्त जी ने उर्मिला की रचना की, पर साकेत काव्य का लेखन सन 1914 से समारंभ होता है। इन सभी प्रयासों का मूल प्रेरक तत्व नारी के संबंध में बदली हुई भावना थी। उर्मिला अपनी पारंपरिक गरिमा के लिए हुए नवीन है। उर्मिला को केंद्रवर्ती बिंदु मान लेने पर समस्त रामायणी कथा उसके चतुर्दिक घूमने के लिए बाध्य हो जाती है। फलस्वरूप साकेत का कथ्य और रूप दोनों में अपेक्षित परिवर्तन आवश्यक हो गया। लेकिन इसका नाम उर्मिला न रखकर साकेत क्यों रखा गया? संभवतः कवि उर्मिला को साकेत के नर नारियों, नदी कछारों, प्रातः दोपहर संध्या रात्रि लोकबाग की चर्चाओं और समस्याओं आदि से संबद्ध करना चाहता था, अन्यथा उर्मिला की चारित्रिक पूर्णता संभव नहीं थी। ऐसा करने के लिए वह बाध्य था, क्योंकि उर्मिला की सीमा साकेत की सीमा थी। चित्रकूट को प्रत्यक्ष कथा का अंग बनाने का कारण यह था कि एक विशेष अवसर पर साकेत का पूरा समाज चित्रकूट में ही था। उस समाज के अतिरिक्त साकेत और क्या हो सकता था? गोस्वामी तुलसीदास ने भी चित्रकूट की घटना को अयोध्या कांड के ही भीतर रखा है। इस नाम के फलस्वरूप रामायणी कथा का मुख्य आधार लेते हुए भी साकेत का स्वतंत्र अस्तित्व प्रतिष्ठित हो सका है। कथा का आरंभ अयोध्या के राजभवन में होने वाले लक्ष्मण उर्मिला के विनोद से होता है। इसके पश्चात कैकेयी मंथरा संवाद, राम वन गमन, चित्रकूट सभा आदि की घटनाएं 8 सर्गों तक चलती हैं। 9वें सर्ग में उर्मिला का वियोग वर्णन है। 10वें सर्ग में सरयू को संबोधित करती हुई उर्मिला अपने जन्म से लेकर स्वयंवर तक की कथा स्मृति संचारी के रूप में या फ्लैशबैक के रूप में कहती है। 11वें सर्ग में शत्रुघ्न और हनुमान के माध्यम से दंडकारण्य से लेकर लक्ष्मण को शक्ति लगने तक की घटनाओं का वर्णन किया गया है। 12वें सर्ग में साकेत निवासियों की युद्ध की तैयारी, लंका का युद्ध, राम का अयोध्या आगमन और उर्मिला लक्ष्मण का मिलन वर्णित है। संपूर्ण कथा को उर्मिला और साकेत से संबद्ध रखने के कारण नाटकीय शिल्प का सहारा लेना पड़ा है। सारी घटनाएं साकेत के रंगमंच पर घटित होती हैं, कुछ प्रत्यक्ष रूप में, कुछ सूच्य रूप में। दूसरे शब्दों में अयोध्या कांड के अतिरिक्त रामायणी कथा की शेष घटनाएं सूच्य रूप में ही कही गई हैं। इससे साकेत की रूप संघटना में एक प्रकार की नवीनता आई है, किंतु क्रिया व्यापार से समन्वित समस्त घटनाओं को सूक्ष्म बना देने से साकेत का रंगमंच सूना लगने लगता है। इस शून्यता को उर्मिला के विरह वर्णन और साकेत समाज की प्रतिक्रियाओं से भरने का प्रयास किया गया है, पर विरह वर्णन की भावुकता और साकेत समाज की उपरली प्रतिक्रियाएं शून्य को भर नहीं पाती। इसके संबंध में यह कहा जाता है कि कवि ने रामायणी कथा को असंतुलित रूप में प्रस्तुत किया है, किंतु रामायणी कथा लिखना उसका उद्देश्य नहीं था। रामायणी कथा के अधिकांश भाग को सूक्ष्म रूप में प्रस्तुत करने के अतिरिक्त उसके पास चारा नहीं था। खटकने वाली बात है रंगमंच की शून्यता, इससे उसे महाकाव्योचित औदात्य नहीं मिल पाया है। गुप्त जी के काव्य का नक्शा गोस्वामी जी के रामचरितमानस के नक्शे से अलग है, इसलिए साकेत के मार्मिक स्थल मानस के मार्मिक स्थलों से भिन्न है, पर निषाद मिलन, दशरथ मरण, चित्रकूट प्रसंग दोनों में है। इस स्थलों के संदर्भ में तुलनात्मक दृष्टि से विचार करने पर गुप्त जी का वर्णन न इतना गंभीर बन पाया है और न मनोवैज्ञानिक। इन प्रसंगों में भी भावनामयता, सेंटिमेंटलिटी उनका पीछा नहीं छोड़ सकी है। अपने नवीन उद्गारों के बावजूद उनके पात्र भावनामय, मर्यादावादी और नवीन मानवतावादी आदर्श लिए हुए हैं। कवि ने पुराने घेरे के भीतर अपने पात्रों को व्यक्तित्व प्रदान करने की चेष्टा की है, पर जहां अपने घेरे को तोड़कर उर्मिला अयोध्या वासियों को युद्ध का उपदेश देने लगती हैं, वहां उसकी व्यक्तित्व संपन्नता सतही हो जाती है। विरह वर्णन के प्रसंग में परंपरा भुक्त परिपाटी से भिन्न वह अपने प्रेम के शुभ प्रभाव से प्रकृति को प्रसन्न देखना चाहती है, किंतु यह नयापन केवल आदर्श है। इससे अधिक यथार्थवादी वे ही लोग थे जो प्रकृति को नायक नायिका के दुख में दुखी और सुख में सुखी दिखलाते आए थे। लक्ष्मण मानस में बहुत कम बोलते हैं, वे प्रायः उन्हीं अवसरों पर बोलते दिखाई पड़ते हैं जहां कोई अपमानजनक स्थिति उत्पन्न होती है, पर साकेत में उनकी मुखरता विशेषता कैकेयी के प्रसंग में उनके व्यक्तित्व में कुछ जोड़ती नहीं बल्कि घटाती ही है। पर परिवार के वृत्त में सभी चरित्र विशेष प्रकार की आत्मीयता लिए हुए हैं। सच पूछिए तो वे पारिवारिक परिवेश के कवि हैं। उनके चरित्र चित्रण और भाव दशाओं को इसकी सीमा में रख कर देखना चाहिए। उन्होंने अपने को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। इस पारिवारिक भावमयता के कारण डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे गार्हस्थ्य रस की संज्ञा दी है। इस परिप्रेक्ष्य में कवि ने प्रेम, त्याग, उदारता, निष्प्रियता आदि मानवीय गुणों को देखा है। पति पत्नी, देवर भाभी, माँ बेटा, सास बहु, स्वामी सेवक आदि के मर्यादापूर्ण संबंधों को चित्रित करना गुप्त जी का मुख्य लक्ष्य रहा है। उनके आदर्श चरित्र साधक चरित्र रहे हैं, क्योंकि वे स्वयं साधक कवि थे। परिवार उस समय का आदर्श था। इससे संगठनात्मक पक्ष पर प्रेमचंद और शुक्ल जी दोनों ने जोर दिया है। पर साकेत की विशेषता रामायणी कथा को इलौकिकता का अनुसंग देने में है। राम मानव है, राजकीय परिवार के लोग सामान्य मनुष्य के रूप में पहचाने जाते हैं। सीता के बारे में तुलसीदास ने लिखा है, पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, सियन दीन पग अवनि कठोरा। पर वे साकेत में स्वावलंबिनी बन जाती हैं। सामान्य मनुष्य के रूप में चित्रित होकर साकेत के पात्र नहीं, कहीं जटिल नहीं है, कहीं अभावुक नहीं है, गुप्त जी के व्यक्तित्व के अनुरूप सीधे और सरल हैं। रस और महाकाव्य के रूप विन्यास की दृष्टि से भी इसमें नयापन है। न तो इसमें परंपरानुमोदित वीर रस है और न कथा का सिलसिलेवार वर्णन। यह हिंदी महाकाव्य के भविष्य का संकेत लेकर आया। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के मतानुसार साकेत में महाकाव्य संबंधी नया आदर्श और प्रतिमान स्थिर करने का प्रयत्न जानबूझकर भले ही न किया गया हो, परंतु महाकाव्य विषय क्रमागत व्यवस्था और परिपाटी से यह अनजाने में ही इतना दूर चला गया है कि आधुनिक युग का नया साहित्यिक प्रवर्तन उसे स्वभावतः अपने विकास की प्रारंभिक कड़ी मानकर चलता है। साकेत के बाद रचे गए गुप्त जी के मुख्य ग्रंथ हैं यशोधरा, सिद्धराज, द्वापर, हिडिंबा, पृथ्वीपुत्र, जय भारत, विष्णुप्रिया आदि। यशोधरा और विष्णुप्रिया में साकेत की उर्मिला का ही चरित्र विस्तार है। इनमें भी नारी के वे ही आयाम उभरे हैं जो उर्मिला में दिखाई पड़ते हैं। त्याग, तपश्चर्या, साधना, तप आदि से मंडित ये सभी नारियां पति से वियुक्त हैं। लक्ष्मण, बुद्ध और चैतन्य अपने अपने ढंग से साधक हैं। इनमें बुद्ध का व्यक्तित्व सबसे बड़ा है। संभवतः इसी परिप्रेक्ष्य के कारण यशोधरा का व्यक्तित्व अधिक मनस्विता पूर्ण और संयमित बन पड़ा है। विष्णुप्रिया भी एक दुखिया नारी है जो सहने के लिए बनी है। वस्तुतः नारी को परंपरा युक्त रूप में ही देखा गया है। उसको जो व्यक्तित्व दिया गया है उसका केंद्रीय बिंदु पति है। नारी की समस्त साधना, तपश्चर्या, त्याग अपने किसी मंतव्य को लेकर नहीं है, बल्कि वे पति के ही केंद्रीय बिंदु के चारों ओर घूमते हैं। गुप्त जी की नारी भारतेंदु युगी नारी विषयक चेतना का संस्कार है। यह वर्णाश्रम धर्मी, कुलवधु, पतिव्रता और परंपरावादी है। उसकी इच्छा पति की इच्छा है, उसका प्राप्य पति है। पति के बाहर, कुल के बाहर जो कुछ भी वह दिखाई पड़ती है वह औपचारिक है। सच तो यह है कि गुप्त जी के यश का मूलाधार साकेत ही है। इसका मुख्य कारण है कि वह अपने अपने युग के अनुरूप है। वह अपने समसामयिक सामाजिक आदर्श के न आगे है न पीछे, वह ठीक उसके साथ है। सन 1914 में साकेत की रचना का प्रारंभ हुआ और 18 तक उसके 5 सर्ग सरस्वती में छप गए। सन 1931 में इसका प्रकाशन हुआ। पंत का पल्लव सन 1926 में प्रकाशित हुआ। इसके पूर्व आदर्शवादी सांस्कृतिक पुनरुत्थान का ही जमाना था और साकेत इसका पूर्ण प्रतिनिधित्व करता है। साकेत का नवम सर्ग इस बात का सबूत है कि वह नवीन युग चेतना का समर्थक तो हो सकता है पर उसके साथ नहीं चल सकता। जय भारत 1952 में उनके पुराने आदर्श ही दोहराए गए हैं। हिडिंबा के चरित्र चित्रण को देखकर आलोचक गुप्त जी के पारस स्पर्श की मुग्ध भाव से प्रशंसा करते हैं। यह उच्चतम मानव आदर्श की शिक्षा से ओतप्रोत है, पर इसमें नए युग के अनुरूप मार्मिक स्थलों को नहीं चुना जा सकता है। अन्यथा शांति पर्व को 2 पंक्तियों में चलता न कर दिया जाता। नर में नारायण की प्रतिष्ठा, सभी लोग के सुख की कामना, अबला जीवन की कहानी, वैष्णव दृष्टि प्रसूत विकृत अर्थापन द्वारा जो कुछ निर्मित हुआ है वह 5वें दशक की संशयात्मक दृष्टि के विरुद्ध है। नए युग में विगत आदर्शों की स्थापना उनकी उत्थान मूलक पुरानी दृष्टि के अनुरूप है। गुप्त जी की काव्य शैली में जो विविधता दिखाई देती है वह उनकी दीर्घकालीन साधना का परिणाम है। उन्होंने खंड काव्य, निबंध काव्य, महाकाव्य, पद्य नाट्य, चंपू, प्रगीत, मुक्तक आदि लिखे। अनेक प्रकार के वर्णिक मात्रिक छंदों के प्रयोग किए, पर उनकी मुख्य देन खड़ी बोली को काव्योचित संस्कार देने में है। स्वयं गुप्त जी भारतीय संस्कृति तथा समसामयिक यथार्थ के बाह्यार्थ निरूपक कवि हैं। इसलिए खड़ी बोली का विवरण वर्णनात्मक क्षमता को बढ़ाकर उस युग में उन्होंने अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया। हरिओत जी का काव्य क्षेत्र में पदार्पण उनके पहले ही हो चुका था, पर वे भाषा के 2 छोरों पर थे। या तो उन्होंने संस्कृत वृत्तों को संस्कृत निष्ठ भाषा में बांधा या मुहावरों लोकोक्तियों को ठेठ भाषा में। सामान्य काव्य भाषा का प्रयोग उन्होंने प्रायः नहीं किया। गुप्त जी ने भी संस्कृत शब्दावली की प्रचुर सहायता ली है, पर खड़ी बोली का अपना स्वरूप सुरक्षित रहता है। उनकी शब्दावली मुख्यतया अभिधा विशिष्ट है। वे अंतर्वृत्तियों के निरूपक कवि नहीं है, इसलिए यहाँ जहाँ कहीं उन्होंने लाक्षणिक पदावली का प्रयोग किया है वह बहुत कुछ सपाट हो गया है। उनका महत्व इसी में है कि इस तरह के नए प्रयोग के लिए उन्होंने जमीन बनाई। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद 1865 से 1947। महावीर प्रसाद द्विवेदी का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली सिद्ध हुआ कि भारतेंदु के बाद से ही काव्य साधना करने वाले अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद भी संस्कृत वृत्तों में रचना करने लगे। इन वृत्तों में लिखा गया काव्य ग्रंथ प्रिय प्रवास अपने समय का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आरंभ में उन पर भक्ति और रीति के संस्कार ही प्रबल थे। वे कवि समाज के सदस्य के रूप में ब्रजभाषा में समस्या पूर्तियां किया करते थे। जब उन्होंने खड़ी बोली का बढ़ता हुआ प्रचार देखा तो उन्होंने भी उर्दू छंदों के सहारे बोलचाल की खड़ी बोली में पदों की रचना की, किंतु उनकी ख्याति का मुख्य आधार प्रिय प्रवास है। यह ग्रंथ सन 1914 में प्रकाशित हुआ। इसमें कवि ने राधा कृष्ण की वियोग कथा को नया रूप देने तथा श्री कृष्ण से संबद्ध अलौकिक कार्यों को बुद्धि संगत बनाने की चेष्टा की है। प्रिय प्रवास को कुछ लोगों ने खड़ी बोली हिंदी का प्रथम काव्य माना है। इसमें श्री कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक की कथा 17 सर्गों में लिखी गई है। कुछ लोग इसे नए ढंग का महाकाव्य मानते हुए बतलाते हैं कि इसमें संस्कृत आचार्यों द्वारा निर्दिष्ट महाकाव्यों का लक्षण नहीं मिलेगा। कुछ लोग ठीक इसके विपरीत महाकाव्य की पुरानी कसौटी पर इसे खरा उतार देते हैं। वे इसमें मंगलाचरण, सज्जन दुर्जन प्रसंग, ऋतु वर्णन, सर्ग के अंत में छंद का परिवर्तन आदि को दिखाते हुए प्रिय प्रवास को निःसंकोच महाकाव्य की संज्ञा दे डालते हैं। किंतु न तो शैलीगत नवीनता के कारण ही कोई काव्य महाकाव्य हो सकता है और न पुरानी परिपाटी का अनुसरण करने से ही यह संभव है। महाकाव्य के लिए जीवन की जो संपूर्णता और उदात्तता अपेक्षित होती है उसका उसमें नितांत अभाव है। आचार्य शुक्ल ने तो इसे प्रबंध काव्य भी नहीं माना है। उन्होंने कहा है, ये काव्य अधिकतर भाव विवरणात्मक और वर्णात्मक है। कृष्ण के चले जाने पर ब्रज की दशा का वर्णन बहुत अच्छा है। विरह वेदना से क्षुब्ध वचनावली प्रेम की अनेक अंतरदशाओं की व्यंजना करती हुई बहुत दूर तक चलती है, जैसा कि इसके नाम से प्रकट है। इसकी कथा वस्तु महाकाव्य क्या अच्छे प्रबंध काव्य के लिए भी अपर्याप्त है। इस काव्य में वर्णन का इतना विस्तार है कि चरित्र चित्रण के लिए विशेष अवकाश नहीं मिल पाया है। कृष्ण को कवि ने गांधीवादी नीतिमत्ता के अनुरूप लोक सेवक के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया है। स्थूल नैतिकता और मर्यादावादी दृष्टिकोण के कारण कृष्ण का सशक्त व्यक्तित्व अनुद्घाटित ही रह गया है। राधा को लोक सेवा व्रत में दीक्षित कर दिया गया है। राधा कृष्ण में न भक्तिकालीन कवियों द्वारा प्रक्षेपित अलौकिकता है, न रीतिकालीन कवियों द्वारा प्रक्षेपित विलासिता। उन्हें सुधारवादी दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है। प्रिय प्रवास की छंद योजना और संस्कृत निष्ठ पदावली ने भी खड़ी बोली के विकास में बहुत उल्लेखनीय योग नहीं दिया है। बाद में चलकर हिंदी में न तो संस्कृत के वृत्त ग्रहण किए गए हैं और न प्रिय प्रवास की संस्कृत बहुलता पदावली। इसके बाद हरिओत जी ने बोलचाल संबंधी मुक्तकों की रचना की। इनमें मुख्य रूप से चुभते चौपदों और चोखे चौपदों का विशेष नाम लिया जाता है। बाद में वैदेही वनवास नामक दूसरा प्रबंध काव्य प्रकाशित हुआ। इस काव्य को भी हरिओत जी ने महाकाव्य ही माना है। कुछ शोधार्थियों ने हरिओत जी के कथन को 52 तोला पाव रत्ती सही मानकर वैदेही वनवास को भी महाकाव्य की कोटी में बैठा दिया, किंतु यह काव्य तो अनेक अंशों में प्रिय प्रवास की अपेक्षा सीमित तथा फलक तथा काव्यात्मकता में अपकर्ष पूर्ण है। प्रिय प्रवास में यशोदा और राधा की विरहानुभूति मन के अंतरंग को छूती है, पर वैदेही वनवास का आदर्शवाद वाल्मीकि, कालिदास तथा भवभूति के यथार्थ के विरुद्ध पड़ता है। वैदेही वनवास के सीता राम हाड़ मांस के मनुष्य न होकर आर्य समाजी आदर्श के धोखे हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी तथा उनकी सरस्वती से प्रेरणा पाकर कविता लिखने वाले कवियों की संख्या बहुत अधिक है, किंतु उनमें मैथिली शरण गुप्त, राय देवी प्रसाद पूर्ण, रामचरित उपाध्याय, गिरधर शर्मा नवरत्न, लोचन प्रसाद पांडे, सियाराम शरण गुप्त आदि प्रसिद्ध हैं। रामचरित उपाध्याय 1872 ईस्वी से 1938 ईस्वी द्विवेदी युग के एक प्रमुख कवि हैं। उन्होंने पहले ब्रजभाषा में काव्य रचना शुरू की। विजयी, वसंत, श्रवण श्रृंगार, सुधा शतक का बरवा आदि ब्रजभाषा की रचनाएं हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रोत्साहन से उन्होंने खड़ी बोली की एक रचना पवन दूत 1906 में सरस्वती में प्रकाशनार्थ भेजी। 1914 से 15 में उनके प्रसिद्ध काव्य रामचरित चिंतामणि का कुछ अंश सरस्वती में प्रकाशित हुआ। यो इस ग्रंथ का प्रकाशन 20 में हुआ। इसके अतिरिक्त सुक्ति मुक्तावली 1915 ईस्वी में, देवदूत 1918 में, भारत भक्ति 1919 में, रामचरित चंद्रिका 1919 में आदि उनके अन्य काव्य ग्रंथ हैं। उस समय के प्रवाह के अनुसार अतीत के गौरव का स्मरण, वर्तमान की दुर्दशा का वर्णन और भविष्य का उज्ज्वल चित्र उनकी मुक्तक रचनाओं में मिलेगा। पद्य प्रबंधों में सामाजिक त्रुटियों, बाल विवाह, वृद्ध विवाह, स्त्री शिक्षा का अभाव का चित्रण हुआ है। कुछ रचनाओं में वीर भावना को जगाया गया है तो कुछ में कृषक वर्ग के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित की गई है। प्रकृति वर्णन बहुत कुछ नीति परक हो गया है। ब्रजभाषा की विदाई, समय समालोचक आदि कविताएं साहित्य से संबद्ध हैं। उनका प्रमुख ग्रंथ रामचरित चिंतामणि है। इस प्रबंध काव्य को भी युगीन परिप्रेक्ष्य में रखने का प्रयास किया गया है। इस काव्य पर आक्षेप लगाया गया है कि इसमें रामकथा के मार्मिक स्थलों को छोड़ दिया गया है या उन्हें संक्षिप्त कर दिया गया है, पर यह आक्षेप आलोचकों की लीकबद्ध दृष्टि का परिचायक है। उपाध्याय जी ने उन्हें छोड़कर अथवा संक्षिप्त कर बुद्धिमानी का परिचय दिया है। मानस के मार्मिक स्थलों पुनः दोहराए नहीं जा सकते, साकेत में दोहराए जाकर वे निष्प्रभ हो गए हैं। उपाध्याय जी ने कई नए प्रसंगों की परिकल्पना की है। मारिच का रावण को उपदेश देना, अंगूठी देने के पूर्व अशोक वाटिका में हनुमान का सीता की हृदय परीक्षा लेना, राम बाली संवाद, सीता निर्वासन के समय लक्ष्मण सीता संवाद, किंतु ये स्थल बहुत मार्मिक नहीं बनाए जा सके हैं। स्थान स्थान पर उस समय के पराधीनता जन्य क्लेश और भविष्य की आशा परक परिकल्पना को जोड़ दिया गया है, किंतु सब मिलाकर उन्होंने राम कथा का परंपराभुक्त रूप ही प्रस्तुत किया। यही कारण है कि रामचरित चिंतामणि का स्वागत नहीं हुआ। उनकी भाषा भी इस समय से पिछड़ी हुई है। व्याकरणगत भ्रांतियों के साथ साथ उनमें भाषा परिनिष्ठता की भी कमी मिलती है। उस समय तक भाषा का रूप बहुत कुछ स्थिर हो चुका था, किंतु उपाध्याय जी ने इसका लाभ नहीं उठाया। उनके संबंध में इतना ही कहा जा सकता है कि वे भरसक युग के साथ थे। लोचन प्रसाद पांडे 1886 से 1959 छत्तीसगढ़ के निवासी थे। उनकी रचनाएं आनंद कादम्बिनी, सरस्वती, हिंदी प्रदीप, इंदु, मर्यादा, प्रभा, सम्मेलन पत्रिका आदि में बराबर प्रकाशित होती रही हैं। विषय की दृष्टि से उनके काव्य में विविधता दिखाई देती है। नीति कविता 1906, मेवाड़ गाथा 1914, पद्य पुष्पांजलि 1915 आदि उनके काव्य हैं। नीति कविता में नीति से संबद्ध विषय है। मेवाड़ गाथा में चित्तौड़ के राणा भीम सिंह के अनुपम त्याग की गाथा है। पद्य पुष्पांजलि में देशभक्ति विषयक रचनाएं हैं। ग्रीष्म, वर्षा, हेमंत, मंदाकिनी, गंगा आदि में प्रकृति को आलंबन के रूप में सामान्य ढंग से चित्रित किया गया है। शिक्षा, हिंदू विश्वविद्यालय, हिंदी राष्ट्रभाषा आदि विवरणात्मक रचनाएं हैं। मृगी दुखमोचन की सरसता सराहनीय है। पांडे जी की रचनाओं में जो इतिवृत्तात्मक और विवरण की प्रधानता मिलती है, वह द्विवेदी जी के प्रभाव मंडल की विशेषता है। भाषा अपरिष्कृत और सदोष है। द्विवेदी जी के प्रभाव और प्रोत्साहन से जो रचनाएं प्रकाश में आई, वे सामान्यतः वर्णनात्मक और विवरणात्मक हैं। जो लोग सीधे उनसे प्रभावित नहीं थे, वे भी उस परिवेश से मुक्त नहीं हो सके। सिया राम शरण गुप्त 1895 से 1963 इस समय के दूसरे विशिष्ट कवि हैं, जिनके साहित्य में साधना, तपश्चर्या और करुणा का स्वर मुखरित हुआ है। बार बार प्रश्न उठाया गया है कि जब अन्य कवि पौरुष, ओज, देशभक्ति आदि का राग सुना रहे थे, तब सिया राम शरण सबसे अलग करुण रागिनी छेड़े हुए थे। ऐसा क्यों? इसे कुछ लोग उनकी अपनी पारिवारिक स्थिति, दैवी प्रकोप, शारीरिक रुग्णता से संबद्ध करते हैं। यह आंशिक रूप में सच है, पर समय के राजनीतिक वातावरण में उल्लास और करुणा दोनों व्याप्त थे। अपनी रुचि परिस्कृति के कारण सियाराम शरणगुप्त ने दूसरे को ही चुना। इनकी पहली रचना मौर्य विजय 1914 में प्रकाशित हुई और उसमें राष्ट्रीय चेतना का अंतर्भाव है, पर इनके शेष काव्य अनाथ, दुर्वादल, निषाद, आर्द्रा, आत्मोत्सर्ग, पाथे, मृणमयी, बापू, दैनिकी, उन्मुक्त, नकुल, नोआखली, जय हिंद और गीता संवाद सन 1920 के बाद प्रकाशित हुए। इनमें सामान्यतः जीवन की साधना, सात्विकता, शुद्ध बुद्धत्व की सहज अभिव्यक्ति हुई है। उनमें मैथिली शरणगुप्त की भांति भावनामयता नहीं है, हास विलास नहीं है, पर है एक ईमानदार कवि की प्रामाणिक अनुभूति की अभिव्यक्ति। यह कहीं भी नैराश्य की सृष्टि नहीं करती। उनकी मानवतावादी दृष्टि से सामान्यतः दुखियों का ही चित्र खींचा है। काव्य सौंदर्य के विचार से भी ये कम नहीं ठहराए जा सकते। इसके प्रमाण में बापू को प्रस्तुत किया जा सकता है। वास्तविकता यह है कि 20 के बाद हिंदी में छायावादी काव्य बहुत कुछ प्रतिष्ठित हो चुका था और गुप्त जी अभी द्विवेदी युगीन संवेदना सुधारवादी दृष्टिकोण से संपृक्त को ही वाणी दे रहे थे। उनकी कविता युग के पीछे थी, इसलिए उनकी ओर दृष्टि का न जाना अस्वाभाविक नहीं था। इस काल में कुछ ऐसे कवि भी हुए हैं जो मूलतः ब्रजभाषा के संस्कारी कवि थे, किंतु खड़ी बोली के काव्य से प्रभावित होकर खड़ी बोली में भी रचनाएं की। वे द्विवेदी जी के प्रभाव के बाहर नहीं कहे जा सकते। द्विवेदी जी द्वारा संपादित कविता कलाप में पूर्ण और शंकर की कविताएं भी सम्मिलित हैं। राय देवी प्रसाद पूर्ण और नाथुराम शर्मा शंकर गया प्रसाद शुक्ल सनेही को आचार्य शुक्ल ने द्विवेदी मंडल के बाहर की काव्य भूमि के अंतर्गत रखा, किंतु उनकी जिन प्रवृत्तियों देश दशा समाज दशा आचार विचार त्याग वीरता ऐतिहासिक प्रसंग आदि का उन्होंने उल्लेख किया है, वे स्वयं द्विवेदी मंडल या उन दो दशकों की विशेषताएं हैं। राय देवी प्रसाद पूर्ण 1868 से 1915 की अधिकांश कविताएं ब्रजभाषा में लिखी गई हैं। प्रदर्शनी स्वागत में सामाजिक अव्यवस्था से संबद्ध 206 छपे और स्वदेश कुंडल में देशभक्ति के संबंध में 52 कुंडलियां संग्रहित हैं। ये कविताएं सामान्यतः प्रचार मूलक और सुधारवादी हैं। विषय वस्तु के रूप में स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, पारंपरिक सहयोग, विदेशियों द्वारा धन का अपहरण, भारतीय समाज की अधोगति आदि को ग्रहण किया गया है, तो दूसरी ओर सन 1911 वाले दिल्ली दरबार को भी लिया गया है। यह प्रवृत्ति भारतेंदु मंडल की उस काव्य परंपरा के मेल में है जिसमें देशभक्ति और राजभक्ति दोनों को सम्मिलित किया जाता रहा है। मन मंदिर, विश्व वैचित्र में भक्ति और वेदांत संबंधी रचनाएं हैं। चेतावनी में सनातन धर्म के समक्ष आर्य समाज को संकीर्ण बताया गया है। इन उपदेशात्मक और प्रचारात्मक रचनाओं के अतिरिक्त उन्होंने अमलतास और बसंत वियोग नामक रचनाएं भी की हैं, जो अपेक्षाकृत अधिक सरस और कल्पनात्मक है। दोनों में प्रकृति वर्णन का प्राधान्य है। बसंत वियोग एक लंबी कविता है जिसमें 2 भाग और 6 अध्याय हैं। इसमें भारत भूमि को एक उद्यान के रूप में कल्पित किया गया है। गुण की दृष्टि से इसमें सत्व की प्रधानता है। प्राचीन काल में इस उद्यान में 12 मास बसंत शोभायमान रहता था। अयोध्या, मथुरा, चित्रकूट आदि क्यारियां स्वर्गीय पुष्पों से अभिमंडित थी। इसके माली अपूर्व थे। विक्रमादित्य और पृथ्वीराज जैसे मालियों ने इसे प्रफुल्लित रखने का प्रयास किया, पर प्रमाद तथा अनैक्य के कारण यह संभव न हो सका। अंत में माली तपस्या के निमित्त मानसरोवर की ओर चले जाते हैं। अंत में आकाशवाणी होती है कि विक्रम की 20वीं शताब्दी में पश्चिमी शासन के अंतर्गत इसकी पुनः उन्नति होगी। पूर्ण की रचनाओं का महत्व काव्य सौंदर्य की दृष्टि से नहीं आका जा सकता, पर 20वीं शताब्दी ईस्वी के प्रथम 2 दशकों में संग्रहित विषय वस्तु प्रायः वे ही हैं जो अन्य कवियों की उनकी खड़ी बोली व्याकरण सम्मत होते हुए भी व्यवस्थित नहीं है। इसमें अनेक प्रकार की बोलियों का सम्मिश्रण है जो खड़ी बोली की शक्ति संपन्नता का ही परिचायक है। नाथुराम शंकर शर्मा 1859 से 1935 ने समस्या पूर्ति के साथ काव्य क्षेत्र में प्रवेश किया। यह प्रवृत्ति रीतिकालीन ब्रजभाषा काव्य परंपरा के अनुरूप है। वे जिस संक्रांति काल में रचना कर रहे थे उसमें पुरानी और नई काव्य परंपरा दोनों के दर्शन होते हैं। उर्दू की काव्य परंपरा से वे खूब परिचित थे, इसके कारण उनके काव्य में वैदग्ध्य और बाकपन आ गया है। शंकर एक ओर समस्या पूर्ति में सिद्ध हस्त थे तो दूसरी ओर नवीन सामाजिक राजनीतिक समस्याओं के प्रति पूर्णतः जागरूक। अपनी चमत्कार पूर्ण अनूठी समस्या पूर्ति के लिए वे पदक तथा उपाधियों से सम्मानित होते थे, किंतु उनका महत्व इतिहास की प्रगतिशील धारा का साथ देने और उसे आगे बढ़ने में है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की सरस्वती की लाज रखने की अपील पर हमारा अधः पतन, समालोचक लक्षण, पावस पंचासिका आदि रचनाएं उन्होंने प्रकाशनार्थ भेजी। ये रचनाएं 1906-07 की सरस्वती में कुछ अंकों में प्रकाशित हुई। इन रचनाओं पर अपनी सम्मति देते हुए ग्रियर्सन ने कहा था कि खड़ी बोली में सुंदर और सरस रचनाएं हो सकती हैं। उनकी सामाजिक रचनाओं का मूल स्वर व्यंग्य परक है। गर्भरंडा रहस्य इसी तरह का प्रबंध काव्य है। उसमें विधवाओं की हीन दशा और मंदिरों में होने वाले दुराचारों का भंडाफोड़ किया गया है। व्यंग्य के फलस्वरूप उनकी भाषा में जो कर्कशता आई है वह उस तरह की कविताओं तक ही सीमित है। विषयानुरूप भाषा में सरसता का गुण भी विद्यमान है। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने उनके संबंध में कहा है कि शंकर जी शब्दों के स्वामी, भाषा के अधीश्वर, मुहावरों में सृजनहार और साहित्य के अखाड़े के अखड़ पहलवान थे। इन्होंने खड़ी बोली में समयानुकूल विषयों पर कविताएं ही नहीं लिखी बल्कि उसे नवीन काव्य शैली और छंदों की निर्दोष विधियां भी दी। भाषा को परिमार्जित करने के साथ ही उन्होंने उसे अभिव्यंजना की नूतन भंगिमाएं प्रदान की है। सनेही जी के सवैयों और गोपाल शरण सिंह के कवित्वों पर उनके टकसालीपन का प्रभाव देखा जा सकता है। शंकर की रचनाओं का एक वृहद संग्रह शंकर सर्वस्व के नाम से प्रकाशित हो चुका है। गया प्रसाद शुक्ल सनेही 1883 से 1972 पूर्ण जी की भांति ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों के माध्यम से रचनाएं करते रहे हैं। प्रारंभ में समस्या पूर्तियों का इन्हें भी काफी शौक था। समस्या पूर्ति मध्यकालीन काव्य की जड़ परंपरा अवश्य थी पर इसके द्वारा एक विशेष अनुशासन में भी बांधना पड़ता है। इन कवियों ने समस्या पूर्ति के अनुशासन का परिचय खड़ी बोली में भी दिया। फलतः इनका खड़ी बोली का काव्य एक प्रकार का टकसालीपन लिए हुए है। ये सनेही और त्रिशूल दोनों उपनामों से कविता करते थे। सनेही नाम से लिखी गई कविताएं सरस और कलात्मक सौष्ठव से संपृक्त हैं। त्रिशूल नाम से वे समसामयिक विषयों पर लिखा करते थे। सन 1928 में उन्होंने सुकवि नाम की एक पत्रिका भी निकाली जो 50 तक बराबर निकलती रही। इससे अनेक नए कवि प्रकाश में आए। प्रेम 25, कृषक क्रंदन, राष्ट्रीय मंत्र, राष्ट्रीय वीड़ा, त्रिशूल तरंग, कला में त्रिशूल, संजीवनी और करुणा, कादम्बिनी काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। सनेही जी कवि सम्मेलनों के बादशाह माने जाते रहे हैं पर कवि सम्मेलनों के कारण उनकी रुचि मध्यकालीन काव्य चमत्कार में उलझकर सीमाबद्ध हो गई है। लाला भगवान दीन 1866 से 1930 और सत्यनारायण कविरत्न 1880 से 1918 दोनों इन दो दशकों की मुख्य धारा से अलग थे। लाला जी ने तो खड़ी बोली में भी कविताएं लिखी पर कविरत्न की ब्रजी में पूरे तौर पर सने हुए जीव थे, फिर भी युगीन चेतना से संपृक्त थे। लाला जी पुरानी काव्यधारा के प्रति अत्यधिक आस्था रखते थे। रोमांटिक काव्यधारा के वे कट्टर विरोधी थे, इसे वे छोकरावाद की संज्ञा देते थे। वीर पंचरत्न वीर रस की कविताओं का संग्रह है। दीन विद्यालय की ओर से उनकी कविताओं का संग्रह दीन ग्रंथावली भाग एक नाम से प्रकाशित हो चुका है। वे पुराने काव्य के मर्मज्ञ थे। वस्तुतः उनकी ख्याति टीकाकार के रूप में ही अधिक है। उन्होंने रामचंद्रिका, कविप्रिया, रसिक प्रिया कवितावली और बिहारी सत्सई पर विद्वतापूर्ण टीकाएं लिखी। उन्होंने अलंकार मंजूषा नाम का अलंकार ग्रंथ और व्यंग्यार्थ मंजूषा नाम से शब्द शक्ति संबंधी ग्रंथ लिखा। वे ब्रजभाषा के मर्मज्ञ थे और उसमें कविताएं लिखते थे। उनकी खड़ी बोली की कविता के संबंध में आचार्य शुक्ल ने ठीक ही लिखा है। खड़ी बोली की कविताओं का तर्ज उन्होंने प्रायः मुंशियाना ही रखा था। वह या छंद भी उर्दू के रखते थे और भाषा में चलते अरबी या फारसी शब्द भी लाते थे। जगन्नाथ दास रत्नाकर 1866 से 1932 बनारस के रहने वाले थे। ब्रजभाषा काव्य के अंतिम प्रौढ़ कवि माने जाते हैं। ब्रजभाषा में कविता लिखने का कार्य तो बाद में भी चलता रहा पर बिहारी की तरह भाषा की चुस्ती और मति राम पद्माकर के कवित्व सवैयों का टकसालीपन केवल रत्नाकर में मिलता है। उनकी रहन सहन वेशभूषा और अभिरुचि मध्यकालीन है। बिहारी उनके सर्वाधिक प्रिय कवि थे। सत्सई पर लिखी हुई उनकी टीका बिहारी रत्नाकर उनकी अपनी अर्थवत्ता में बेजोड़ है। बिहारी की तरह ही उनमें क्लासिकल संयम तथा शब्द प्रयोग में अर्थ की कसावट है। वे सूझबूझ में अप्रतिम, उक्ति वैचित्र में अत्यंत विशिष्ट तथा बिंब विधान के अद्भुत सृष्टा हैं। उद्धव शतक 1929 उनका प्रौढ़तम काव्य है। हिंडोला, श्रृंगार लहरी, वीराष्टक, गंगावतरण आदि उनके अन्य काव्य ग्रंथ हैं। रत्नाकर की श्रेष्ठ काव्य प्रतिभा अतीत की स्मृति रक्षा का बेजोड़ प्रयास है। यही कारण है कि खड़ी बोली कविता के जमाने में भी उन्होंने लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। सत्यनारायण कविरत्न 1880 से 1912 का जीवन की ट्रेजिडी था। वे दरिद्रता, असंतोष और पारिवारिक कलह के विष को मौन भाव से पीते रहे। प्रारंभ में वे श्रृंगारिक समस्याओं और दोहों का पल्लवन करने में अधिक संलग्न थे, किंतु समय की मांग के अनुरूप उन्होंने राष्ट्रीय भावनाओं से संबद्ध काफी रचनाएं की। वंदे मातरम, करुणा क्रंदन आदि कविताओं में देश दुर्दशा का चित्रण मिलता है। वह उस राष्ट्रीय चेतना के मूल में है जिसकी शुरुआत भारतेंदु के समय में हुई थी। अपने समय के अनेक सांस्कृतिक महापुरुषों पर भी उन्होंने कविताएं लिखी। श्री तिलक वंदना, श्री सरोजनी नायडू षटपदी, रविंद्र वंदना, श्री राम तीर्थाष्टक, गांधी स्तव आदि इसी तरह की रचनाएं हैं। उनकी फुटकल कविताएं हृदय तरंग संग्रह में संकलित हैं। इसी संग्रह में उनकी बहुचर्चित रचनाएं भ्रमरदूत और प्रेम कली है। भ्रमरदूत नंददास के रास पंचाध्यायी के ढंग पर लिखा गया है। इसके माध्यम से भी उन्होंने राष्ट्रीय भाव की अभिव्यक्ति का स्थान निकाल लिया है। उनकी ब्रजभाषा उनके जीवन की तरह ही साधु और सरस है। आधुनिक ब्रजभाषा के कवियों में रसमग्न करने की जितनी क्षमता कविरत्न की भाषा में है, उतनी अन्य किसी कवि की भाषा में नहीं है। भारतेंदु के कवित्व सवयों को छोड़कर पदों की भाषा कर्कश है। रत्नाकरी भाषा पर रेहटारिक का गहरा रंग है, किंतु कविरत्न की भाषा मीरा की भाषा की तरह स्वतः स्फूर्त है। रत्नाकर और भारतेंदु ने ब्रजभाषा में मध्यकालीन भावनाओं का ही संरक्षण किया, लेकिन कविरत्न ने मध्यकालीन भाषा और भाव को नई चेतना से अभिमंडित कर उसे बहुत कुछ युगानुकूल बनाने की चेष्टा की। इस दृष्टि से साहित्य के इतिहास में उनके योग का आकलन अभी शेष है। ब्रजभाषा और खड़ी बोली काव्य रचना करने वाले अन्य लोगों में रामचंद्र शुक्ल, दुलारे लाल भार्गव, वियोगी हरि, रामनाथ ज्योतिषी, रामकृष्ण दास, अनूप शर्मा, जगदम्बा प्रसाद, हितैषी आदि उल्लेख्य हैं। स्वच्छंद काव्यधारा रीतिकाल की छंदों, रसों और अलंकारों के बंधनों की बंधी कविता को भारतेंदु और उनके मंडल के लोग शिथिल नहीं कर सके। उनकी भाषा ब्रजभाषा थी, छंद मध्यकालीन थे, अभिव्यंजना की पद्धति और शिल्प का विधान भी पुराना था। श्रीधर पाठक पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रकृति से स्वतंत्र चित्रण की और लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। ख्याल और लावणी जैसे ग्रामीण लय को साहित्यिक रूप दिया। काव्य में उस परोच सत्ता का समावेश किया जो छायावादी काव्य की एक विशेषता मानी जाती है, इसलिए इस धारा के प्रवर्तन का श्रेय उन्हीं को दिया जाता है। श्रीधर पाठक 1859 ईस्वी से 1928 ईस्वी की रचनाओं को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है, अनुदित और मौलिक। अनुदित काव्यों में सर्वप्रथम उन्होंने ग्रे की सेफर्ड एंड फिलोसफर पुस्तक का गणरीय और दार्शनिक शास्त्री नाम से अनुवाद किया। गोल्ड स्मिथ की तीन काव्यों हर्मिट, ट्रेवलर और डेजर्टेड विलेज को बाद में अनुदित किया गया। हर्मिट का एकांतवासी योग, ट्रेवलर का श्रांत पथिक और डेजर्टेड विलेज का उजड़ ग्राम के नाम से अनुवाद किए गए हैं। पहले दो अनुवादों की भाषा खड़ी बोली है और तीसरे की ब्रजभाषा। कालिदास के ऋतु संहार के प्रथम तीन सर्गों का अनुवाद ब्रजभाषा में किया गया है। इसमें कुछ पद खड़ी बोली के भी हैं। इजाबेला किट्स की इजाबेला द थॉट ऑफ वाखल का भावानुवाद है। उनकी मौलिक कृतियों में जगत सच्चाई सार, कश्मीर सुषमा और भारत गीत प्रमुख हैं। जगत सच्चाई सार 51 पदों की एक लंबी कविता है। इसमें जगत की सारता निस्सारता पर विचार किया गया है। प्राय योगियों और तत्वदर्शियों ने संसार को असार कहा है, पर इस अद्भुत जगत को निसार भी कैसे कहा जा सकता है। कश्मीर सुषमा में प्रकृति को उद्दीपन के खाते में से निकालकर बहुत कुछ आलंबन रूप में चित्रित किया गया है। भारत गीत फुटकल गीतों का संग्रह है। मनोविनोद, धन विजय, गुणवंत, हेमंत, वनाष्टक, देहरादून, स्वर्गीय वीणा आदि उनकी अन्य रचनाएं हैं। पाठक जी की समसामयिक विषय वस्तु भारतेंदु की युगीन चेतना के मेल में है। वे भारत की दुर्दशा, आर्थिक विपन्नता से दुखी अवश्य हैं, पर ब्रिटेन की भारत के प्रति कृतज्ञता का गान करने में भी नहीं चूकते। वस्तुतः उनकी विशिष्टता प्रकृति के स्वतंत्र चित्रण में ही सुरक्षित है। स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति वहीं पर दिखाई देती है। विषय वस्तु तथा अनुभूति की नवीनता की दृष्टि से पाठक जी का महत्व नहीं है। हाँ, भाषा की अभिव्यंजना को उन्होंने अवश्य बल दिया है। प्रारंभ में उनकी पदावली में ब्रजभाषा का मिश्रण, उर्दू शब्दों का मेल, संस्कृत की तत्सम शब्दावलियों का तालमेल दिखाई पड़ता है, पर बाद में वे भाषा की विशुद्धता पर बल देने लगे। मिश्रित तथा खिचड़ी भाषा के पद्य में यह योग्यता नहीं आ सकती, ऐसा उनका विचार था। संस्कृत शब्दों की सहायता की आवश्यकता वे स्वीकार करते थे, पर अप्रचलित शब्दों और लंबे समासों के प्रयोग के वे विरोधी थे। रामनरेश त्रिपाठी 1889 से 1963। द्विवेदी जी के समय की इतिवृत्तात्मकता और छायावाद की आत्मनिष्ठता के बीच की कड़ी है। अभी तक देशभक्ति संबंधी रचनाओं में दो प्रकार की प्रवृत्तियां दिखाई पड़ती हैं, एक तो देश की हीनता का विवरण, दूसरी भावुकता परक चित्र। त्रिपाठी जी ने देशभक्ति को बहुत कुछ अनुभूति परक बनाया, फिर भी उनके पहले दो खंड काव्यों मिलन और पथिक में उपदेशात्मक अंश कम नहीं है। गांधी दर्शन की छाया में पथिक सहज नहीं बन पाया है, किंतु प्रकृति के रमणीय खंड दृश्यों के बीच उसका रूखापन कम हो जाता है। मिलन का पथिक खूब देश भ्रमण करता है। इस भ्रमण से वह प्रकृति तथा जन सामान्य का सामीप्य प्राप्त करता है। त्रिपाठी जी का भ्रमण स्वयं अपना है। बिना देश में रमे हुए देश प्रेम की अनुभूति संभव नहीं है। मिलन में विदेशी राज्य से स्वदेश के उद्धार तथा पथिक में क्रूर एक तंत्र से मुक्ति पाने के लिए बलिदान की कहानी है। तीसरे खंड काव्य स्वप्न में आक्रमणकारी शत्रु से देश की रक्षा की जो कथा कही गई है, वह अपेक्षाकृत अधिक मार्मिक और मनोवैज्ञानिक है। इस तीन खंड काव्यों द्वारा जनतंत्र के तीन खतरों, विदेशी शासन, एक तंत्र और आक्रमण शत्रुता से अवगत कराया गया है। इन्हें काव्य में पहले पहल त्रिपाठी जी ने उठाया। इन खंड काव्यों की एक उल्लेखनीय विशेषता की ओर प्रायः ध्यान नहीं गया है, और वह है युवकों का आवाहन। उन्होंने अन्य कवियों की तरह बाल, वृद्ध, युवक सभी को एकजुट होकर देशोद्धार के लिए आहूत नहीं किया है। यह आवाहन केवल भावात्मक होता है। इस तरह का भार मुख्यतः युवा पीढ़ी ही उठाती है। त्रिपाठी जी ने इसी पीढ़ी को इस कार्य में संलग्न किया है। पराधीनता के दुख दर्द का काव्य में उल्लेख बहुत हो चुका है, किंतु अपने स्वत्व और अधिकार भाव के प्रति गहरा संकेत नहीं किया गया था। पथिक कहता है, तुम अपने सुख के प्रबंध के हो न पूर्ण अधिकारी, यह मनुष्यता पर कलंक है प्रिय बंधु तुम्हारी। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। स्वप्न में गहरे अंतर द्वंद की पृष्ठभूमि में देशभक्ति का प्रभावशाली चित्रण है। किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए स्वप्न देखना जरूरी है, किंतु उसे कार्य रूप देने में ही स्वप्न की चरितार्थता है, और इस तरह का सपना युवा वर्ग ही देख सकता है। इन तीनों खंड काव्यों में अनुभूति, कल्पना, वैयक्तिक स्पर्श और अभिव्यंजना की नवीनता देखी जा सकती है। देश की दशा को इन काव्यों में अनुभूति के स्तर पर चित्रित किया गया है। इसे प्रभावशाली बनाने के लिए कवि ने देश की दुर्दशा का चित्रण वैयक्तिक दुख सुख के संदर्भ में किया है। इसके फलस्वरूप यह अधिक तीखा हो गया है। उनके शब्द शिल्प को पंत में और अभिधा द्वारा काव्यात्मक अभिव्यक्ति को निराला में देखा जा सकता है। मूर्त उपमेय के लिए अमूर्त उपमान, अमूर्त के लिए मूर्त उपमान, मानवीकरण, लाक्षणिक प्रयोग आदि को छायावादी काव्य का पूर्वाभास कहा जा सकता है। सर्वोपरि उन्नत मन किसी लक्षित अचल ऊंचाई, एक घड़ी को भी न किसी के लिए हुई सुखदाई। हुई निविड़ तम में प्रभात बेला सी जागृत आशा, दुख से पका हृदय निसिवासर आश्रित चिंता पर था, कहीं शब्द से छू न जाए हर घड़ी उन्हें यह डर था। राम नरेश त्रिपाठी की इस नवीन प्रवृत्ति को मुकुटधर पांडे 1895 ईस्वी ने और आगे बढ़ाया। उन्होंने 1911 से 12 के आसपास खड़ी बोली में कविता लिखना आरंभ किया। इस समय तक नए काव्य के लिए बहुत कुछ मार्ग प्रशस्त हो चुका था। पांडे जी की आरंभिक रचनाएं विषय प्रधान है, किंतु 1914 के इंदु में प्रकाशित पंथी की कविता में आत्मानुभूति की प्रमुखता परिलक्षित होती है। इसमें भावी जीवन के प्रति नैराश्य और कर्म के प्रति जागरूकता दोनों का चित्रण हुआ है। प्रेम बंधन 1913, आंसू 1916 में प्रेम संबंध में रोमांटिक आदर्श प्रतिफलित है। प्रेम को उसने आत्मसमर्पण और उच्चतर भावना से जोड़ा है। भ्रमर की गूंज, नदियों की कलकल ध्वनि, गिरिनभ में आलिंगन प्रेम की प्रतिध्वनि का सुनाई पड़ना उस भावना के व्यापक प्रसार का पूर्व रूप है जो छायावादी काव्य में पाई जाती है। जिस निसीम प्रेम को छायावादी कवियों ने अपना वर्ण विषय बनाया, उसके विस्तार प्रसार और परोच को आभासित करने वाले रूप को पांडे जी की रचनाओं में देखा जा सकता है। विश्वबोध, नमक की डली आदि रचनाएं अव्यक्त के प्रति जिज्ञासा तथा अद्वैत तत्व की ओर संकेत करती हैं। प्रकृति पर कवि की अपनी भावनाओं का आरोप निम्नलिखित अवतरण में देखा जा सकता है। जब मध्यान्ह पवन ने आकर तप्त किया जलथल आकाश, पाया मैंने उसमें तेरे व्यथित हृदय का खर विश्वास। कल नादिनी तटिनी ने भी संध्या को हो भ्रांत महान, पहुंचाया मेरे कानों तक विरह वेदना का तब गान। मुकुटधर पांडे की व्यक्तिकता, कल्पना, अनुभूतिमयता, जिज्ञासा, राष्ट्रीयता, लाक्षणिकता, बिंब विधान आदि से छायावादी काव्य का सीधा संबंध जोड़ा जा सकता है और जोड़ा जाना चाहिए। उसे प्रकृति स्वच्छंदतावाद से अलग विदेशी प्रभावापन्न मानना तर्क संगत नहीं है। छायावाद नाम के प्रवर्तन का श्रेय भी उन्हीं को है। इसके प्रमाण में जबलपुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका शारदा में छपे उनके 3 लेख प्रस्तुत किए जा सकते हैं। रूप नारायण पांडे मूलतः स्वच्छंदतावादी कवि हैं। व्यापक अर्थ में सुभद्रा कुमारी चौहान, गुरु भक्त सिंह, गोपाल शरण सिंह आदि को इसी धारा के अंतर्गत माना जाएगा। गद्य 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रवर्तित हरिश्चंद्री हिंदी के विकास में गतिरोध दिखाई देने लगता है। भारतेंदु के समय में शिक्षा का इतना प्रसार नहीं था, यातायात की सुविधाएं भी कम नहीं थी, हिंदी सामान्य उपयोग की भाषा नहीं बन पाई है थी। भारतेंदु और उनके मंडल के लोग मिशनरी उत्साह से उसकी संवर्धना में लगे हुए थे। सार्वजनिक जीवन के साथ जब तक किसी भाषा का जीवंत और उपयोगितावादी संबंध नहीं होता, तब तक उसके विकास में गतिरोध का आ जाना स्वाभाविक है। पर जो भाषा अपने देश के मिट्टी पानी से उत्पन्न होती है, वह प्रकाश रूप में गतिरुद्ध होकर भी प्रच्छन्न रूप से प्रवाहमान रखती है। हिंदी जनता के हृदय देश की भाषा है, इसीलिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के प्रचार के लिए इसी को माध्यम बनाया। सन 1900 में इसे उत्तर प्रदेश की कचहरियों में स्थान मिला। अपनी भाषा अब कामकाज की भाषा बन गई। 1893 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हो चुकी थी। यातायात के साधनों तथा व्यापारिक सुविधाओं के बढ़ जाने से यह स्वभावतः अंतरप्रांतीय व्यवहार की भाषा बनती जा रही थी, लेकिन इसके प्रसार के कारण इसमें उर्दू, मराठी, बंगला की पदावली और रंग भी आए। उत्तर भारत में अभी तक उर्दू की प्रधानता थी, इसलिए इधर के बहुत से लोगों लेखकों की भाषा में उर्दू, फारसी, अरबी की शब्दावली का धड़ल्ले से प्रयोग होने लगा। बिहार 1912 ईस्वी तक बंगाल का एक भाग था। बिहारी लेखकों की भाषा में बंगाल की गुम्फित पदावली आई। राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की रचनाओं में इसे देखा जा सकता है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के लोगों की भाषा में मराठी का प्रभाव परिलक्षित होता है। गंगा प्रसाद अग्निहोत्री की भाषा पर मराठी की स्पष्ट छाया है। संस्कृत भाषा के प्रति अतिरिक्त उत्साह से भरे हुए लोग जिनके अवशिष्ट आज भी मौजूद हैं, हिंदी पर उसे पूरा पूरा लाद देना चाहते थे। सुधाकर द्विवेदी ने इस प्रकार की भाषा का एक उदाहरण देते हुए अपनी राम कहानी में इसका अच्छा मखौल उड़ाया है। आपके समागमनार्थ में गत दिवस आपके धाम पर पधारा, गृह का कपाट मुद्रित था, आपसे भेंट न हुई, हताश होकर परावर्तित हुआ। इसके अतिरिक्त भोजपुरी, अवधी, ब्रजी शब्दावली का समावेश भी धड़ल्ले से हो रहा था। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864 से 1938। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा की अस्थिरता और व्याकरणगत त्रुटियों को दूर करने का अथक प्रयास किया, और इसमें कोई संदेह नहीं कि भाषागत अराजकता में व्यवस्था लाने का सर्वाधिक श्रेय उन्हीं को है। भाषा का रूप गठित होने के साथ ही द्विवेदी जी ने हिंदी गद्य को अनेक प्रकार की शैलियां भी दी। सरस्वती के माध्यम से उन्हें गद्य पद्य दोनों की भाषा को व्यवस्थित और भावों तथा विचारों को अभिव्यक्त करने में समर्थ बनाने की चेष्टा की। इस समय पढ़े लिखे लोगों का एक वर्ग मध्य वर्ग तैयार हो चुका था। उनका समस्त प्रयास साहित्य को इस वर्ग की शिक्षा और मर्यादा के अनुरूप बनाना था। यही कारण था कि उन्होंने गद्य में निबंध की विधा पर विशेष जोर दिया। बेकन के निबंधों के अनुवाद, बेकन विचार रत्नावली का प्रकाशन विचाराभिव्यक्ति को दिशा देने के लिए ही किया गया। द्विवेदी जी द्वारा लिखे गए छोटे बड़े निबंधों की संख्या लगभग 300 है। उनमें से बहुत से पुस्तकाकार में प्रकाशित हो चुके हैं, जैसे रसज्ञ रंजन, लेखांजलि, संचयन संकलन, अद्भुत आलाप, साहित्य सीकर, साहित्य संदर्भ, समालोचना समुच्चय, प्राचीन कवि और पंडित, विचार विमर्श, आलोचना आदि। द्विवेदी जी के निबंधों को आचार्य शुक्ल ने बातों का संग्रह कहा है। इसका मुख्य कारण है कि उनके निबंधों में विचारों की यह गूढ़ गुम्फित परंपरा नहीं मिलती, जिससे पाठक की बुद्धि उत्तेजित होकर किसी नई विचार पद्धति पर दौड़ पड़े। शुक्ल जी ने प्रकारांतर से अपने निबंधों की शैली की ओर संकेत किया है, पर द्विवेदी जी जिस भाषा और शैली का विधान कर रहे थे उसे शुक्ल जी के निबंधों की नींव समझनी चाहिए। उन्होंने बताया है कि ज्ञान राशि के संचित कोष ही का नाम साहित्य है। यह संचय उन्होंने जगह जगह से किया है, काव्य प्रकाश से, साहित्य दर्पण से, रवि बाबू के काव्यों की उपेक्षिताएं से, कृष्णानंद कवि के प्रबंध सह हृदयानंद से, हंस संदेश और नैसत चरित से, नल आदि। इस तरह के संग्राहक की भूमिका निभाते हुए दिखाई पड़ते हैं। यह ज्ञान राशि भी उपयोगिता मूलक और सात्विक है। इस ज्ञान राशि को उन्होंने सुगम भाषा में प्रस्तुत किया है। वे सरल और व्यवहारिक भाषा के पक्षपाती हैं थे। मैं तो सरल भाषा के लेखक को बहुत बड़ा लेखक मानता हूँ। दूसरी भाषाओं के शब्दों और भावों को ग्रहण कर लेने की शक्ति रखना ही सजीवता का लक्षण है। हमें केवल यह देखते रहना चाहिए कि इस सम्मिश्रण के कारण कहीं हमारी भाषा अपनी विशेषता तो नहीं खो रही, बिगड़कर कहीं वह और कुछ तो नहीं होती जा रही। बस साफ है कि उन्होंने भाषा की मूर्ति गढ़ने का प्रयास किया। यद्यपि इस मूर्ति की संघटना में उनकी नैतिकता, उपयोगितावादी मनोवृत्ति का यथेष्ट योग है, फिर भी वह बाह्य नियमानुवर्तिता, व्याकरणिक नियमानुवर्तिता के बंधनों में अधिक जकड़ी हुई है। व्याकरण के नियमों के पालन का परिणाम यह हुआ कि हिंदी भाषा की एक विशिष्ट प्रकृति बनने लगी और लेखक उसकी परिणति के प्रति सावधान हो गए। द्विवेदी जी की भाषा शैली का एक नमूना देखिए। कविता से विश्रांति मिलती है, वह एक प्रकार का विराम स्थान है। उससे मनोमालिन्य दूर होता है, थकावट कम हो जाती है। चक्की पीसने के समय स्त्रियों काम करने में मजदूर आदि परिश्रम कम होने के लिए गीत गाते हैं। जैसे मनुष्यों के लिए गाने की जरूरत है, वैसे ही देश के लिए कविता की जरूरत है। प्रतिदिन नए नए गीत बनते हैं और सब कहीं गाए जाते हैं। इसी नियमानुसार देश में समय समय नई नई कविताएं हुआ करती हैं। यह स्वाभाविक कीवा नैसर्गिक योजना है। इस उद्धरण के शब्दों पर विचार करते समय पता लगता है कि वे एक मध्यवर्ती मार्ग का अनुसरण करना चाहते थे। संस्कृत के शब्दों का व्यवहारिक स्तर पर प्रयोग करना उन्हें अभिष्ट था। विश्रांति, मनोमाल्य और नैसर्गिक, ऐसे ही शब्द हैं जो सरल शब्दावली के साथ खप जाते हैं। सामान्यतः है इसमें बोलचाल की भाषा के शब्द ही प्रयुक्त हैं। वे संस्कृत के मार्दव की जगह मृदुता रखना पसंद करते थे। मार्दव की कर्कशता हिंदी की प्रकृति के अनुकूल नहीं थी। इस प्रकार विशेष के अनुसार विशेषण का लिंग परिवर्तन भी उन्हें अच्छा नहीं लगता था। साफ गोई इसकी दूसरी विशेषता है। सामान्य स्तर के पाठक को भी यह सहज ही बोधगम्य है। यों भाषा की जटिलता का बहुत कुछ संबंध विचारों की जटिलता से होता है। यहाँ विचार सरल हैं। सरल विचारों को भी साफ गोई के साथ व्यक्त करना भाषा की विशेषता ही है। वाक्य छोटे और परस्पर संबद्ध हैं, पर साफ गोई और वैचारिक संयम का मेल न होने के कारण वे एक ही बात को बार बार दोहराते हैं। आगे चलकर श्याम सुंदर दास और रामचंद्र शुक्ल की शैली में यह संयम आया। उनमें संग्रह पर आग्रह है, विश्लेषण पर नहीं। व्यवस्था पर जोर है, उद्भावना पर नहीं। सरलता पर जोर है, जटिल भावाभिव्यक्ति पर नहीं। किंतु उस समय की इस उपलब्धि का ऐतिहासिक महत्व है। इस भाषा शैली का उस युग से घनिष्ठ संबंध है। वह भी कहा जा सकता है कि उस समय के पढ़े लिखे समाज के ज्ञानवर्धन के लिए जरूरी था कि जो कुछ कहा जाए वह सरल और बोधगम्य हो। इस समसामयिक आवश्यकता ने उनकी भाषा शैली के निर्माण में विशेष योग दिया। श्याम सुंदर दास 1875 से 1945 ने हिंदी साहित्य को अनेक प्रकार से समृद्ध किया। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना, हिंदी हस्तलिखित ग्रंथों की खोज, हिंदी वैज्ञानिक कोष और शब्द सागर का संपादन करके उन्होंने हिंदी को गंभीर दिशा की ओर मोड़ा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष होने पर उच्च शिक्षा के योग्य साहित्य आलोचन, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा का विकास आदि पुस्तकें लिखकर सिद्ध किया कि हिंदी गद्य में श्रेष्ठ पुस्तकें लिखी जा सकती हैं। कई प्राचीन कवियों के ग्रंथों का संपादन कर उन्होंने स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए पाठ्य पुस्तकें तैयार की। इसके विपरीत उन्होंने साहित्यिक निबंध भी लिखे। समाज और साहित्य, भारतीय साहित्य की विशेषताएं, कर्तव्य और सत्यता, तुलसीदास, सूरदास, हमारी भाषा आदि निबंधों द्वारा उन्होंने जो विषय प्रतिपादन किया है उसमें वैचारिक तारतम्यता तो है पर अपेक्षित गंभीरता का अभाव है। फिर भी उसमें विश्लेषण का बीज सुरक्षित है, जिसका विकास आगे चलकर शुक्ल जी की भाषा में हुआ। द्विवेदी जी की भाषा बोलचाल की भाषा के निकट है, किंतु बाबू साहब की भाषा संस्कृत निष्ठ है। आश्रय चतुष्टय जैसी भाषा का लिखना द्विवेदी जी को पसंद नहीं हो सकता था। वाक्य लंबे हैं किंतु अर्थ बोध की दृष्टि से स्पष्ट हैं। द्विवेदी जी ने तद्भव शब्दों के व्यवहार द्वारा भाषा को स्वाभाविक दिशा की ओर प्रवाहित करने की चेष्टा की, किंतु बाबू साहब ने कदाचित शिक्षण को दृष्टि में रखते हुए तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक श्रेयस्कर समझा। मौलिकता उनमें भी नहीं है, पर भाषा को विश्लेषणक्षम करने में उनका प्रयास निश्चय ही स्तुत्य है। बाबू यशोदानंद अखौरी, विजयनंद दुबे, मिश्रबंधु, चतुर्भुज औदित्य, किशोरीदास वाजपेयी, कृष्ण बलदेव वर्मा, स्वामी सत्यदेव परिव्राजक, मन्नन द्विवेदी, केशव प्रसाद सिंह आदि ने अनेक प्रकार की शैलियों के प्रादुर्भाव में योग दिया। बालमुकुंद गुप्त 1865 से 1907, यद्यपि गुप्त जी पुनर्जागरण युग और पूर्व स्वच्छंदतावादी युग के संधिकाल में हुए, फिर भी उन्हें पुनर्जागरण युग के अंतर्गत ही रखा जाता है क्योंकि उनका कार्यकाल इस युग में भी चला आया है। वे द्विवेदी जी के प्रभाव मंडल के बाहर थे, कालक्रम की दृष्टि से भी और भाषा शैली की दृष्टि से भी। वे वस्तुतः भारतेंदु की प्राणवत्ता लेकर आए, किंतु भाषा शैली के प्रति वे वैसे ही सतर्क थे जैसे द्विवेदी जी खुद। हिंदी में लिखने के पूर्व वे उर्दू पत्रकारिता में महारत हासिल कर चुके थे। अखबार चुनार और लाहौर के कोहिनूर उर्दू पत्रों का उन्होंने योग्यता पूर्वक संपादन किया। कानपुर के उर्दू मासिक नया जमाना में भी वे बराबर लिखते रहे। 1889 में वे काला कांकर के हिंदुस्तान में सह संपादक के रूप में आए, किंतु वैचारिक मतभेद के कारण उन्हें अलग होना पड़ा। 1893 में वे हिंदी बंगवासी के संपादक हुए। बद्रीनारायण चौधरी हिंदी बंगवासी को भाषा गढ़ने की टकसाल बताते हैं। उस टकसाल का कोई सिक्का बाबू बालमुकुंद गुप्त की छाप के बिना नहीं निकलता था। 1899 में वे भारत मित्र के संपादक नियुक्त हुए। उनकी ख्याति के आधार पर भारत मित्र के संपादन काल में लिखे गए श्री शंभू के चिट्ठे और खत हैं। पुनर्जागरण युग में पुनर्जागरण की जो परंपरा चल निकली थी, गुप्त जी ने उसे ही अत्यंत व्यंग्यात्मक ढंग से प्रस्तुत किया। उनमें चोट करने तथा उसके माध्यम से भारतीयों में आत्मसम्मान भरने की अपूर्व क्षमता थी। उन्होंने शिव शंभु शर्मा के नाम से ये पत्र लॉर्ड कर्जन को लिखे। लाला लाजपत राय ने कोहिनूर में राधा कृष्ण के नाम से कुछ चिट्ठे छपवाए थे, जो सर सैयद अहमद खां के हिंदू मुस्लिम एकता संबंधी नीति के विरोध में लिखे गए थे। जब ये चिट्ठे छप रहे थे, उस समय गुप्त जी कोहिनूर के संपादक थे। संभव है इन चिट्ठों से गुप्त जी ने प्रेरणा ली हो। लॉर्ड कर्जन की भारत विरोधी नीति से गुप्त जी अत्यधिक क्षुब्ध थे। उस क्षोभ आक्रोश को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने के लिए व्यंग्य एकमात्र तरीका था। इसे व्यंग्य न कहकर विडंबना कहना अधिक संगत है। गुप्त जी के चिट्ठों का सारा ढांचा विडंबनात्मक है। कुछ उदाहरण देखिए। अभी गत मंगलवार को नाग पंचमी थी। हमारे श्रीमान लॉर्ड कर्जन होते तो देखते क्यों कर हिंदू स्त्रियां नाग की पूजा करने उसकी बावी पर जाती हैं और कैसे उसे दूध चढ़ाती हैं। जो देश सांप को भी ईश्वर मानकर पूजता है और उससे कल्याण की कामना करता है, वह लॉर्ड कर्जन जैसे वायसराय से क्या कुछ आशा नहीं कर सकता। इससे उसका स्वागत करते हैं। तीसरे पहर का समय था। दिन जल्दी जल्दी ढल रहा था और सामने से संध्या फूर्ति के साथ पांव बढ़ाए चली आती थी। शर्मा महाराज बूटी की धुन में लगे हुए थे। सिलवट से भंग रगड़ी रही थी। मिर्च मसाला साफ हो रहा था। बादामी इलायची के छिलके उतारे जा रहे थे। नागपुरी नारंगियां छिल छिल कर रस निकाला जाता था। इतने में देखा कि बादल उमड़ रहे हैं, चीले नीचे उतर रही हैं। तबीयत भुरभुरा उठी। उधर घटा बाहर में बाहर। इतने में वायु का वेग बढ़ा, चीले अदृश्य हुई, अंधेरा छाया, बूंदे गिरने लगी, साथ ही तड़ तड़ भड़ होने लगी। देखा ओले गिर रहे थे, ओले थमे, कुछ वर्षा हुई, बूटी तैयार हुई। बम भोला कहकर शर्मा जी ने एक लोटा भर चढ़ाई। ठीक उसी समय लाल डिग्गी पर बड़े लाट मिंटो ने बंग देश के अभूतपूर्व लाट उडवर्ण की मूर्ति खोली। पहले उद्धरण में नाग पूजा के उल्लेख के साथ हिंदू समाज की अतिशय उदाराशयता का परिचय देते हुए साम्राज्यवादी लॉर्ड कर्जन को सांप से भी गया बीता संकेतित किया गया है। यह संकेत हास्य विनोद मात्र नहीं है, बल्कि इस क्षोभ में चोट करने की भरपूर संभावना भी है। दूसरे उद्धरण में छोटे छोटे वाक्यों और बोलचाल के शब्दों द्वारा संध्या की पृष्ठभूमि में भंग बनाने का जो ब्यौरा दिया गया है, वह संपूर्ण संदर्भ में काफी अर्थवान है। मौसम का बदलना, ओले पड़ना, अंधेरा होना, लाल डिग्गी का बजना और उडबर्न की मूर्ति का खोलना आदि के वर्णन से लॉर्ड कर्जन की नीति का भी गहरा लगाव है। दो विरोधी स्थितियों को एक साथ रखकर भारतीयों और लॉर्ड कर्जन दोनों की स्थितियों पर प्रकाश डाला गया। एक भांग पी रहा है, दूसरा मूर्ति का अनावरण। सारा का सारा वातावरण ही विडंबनापूर्ण है। राजनीतिक विषयों को भी साहित्यिक स्तर पर प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने में गुप्त जी अकेले हैं। अनेक प्रकार की भावनाओं को धीरे पर गहरी चोट करने वाली शैली उनकी अपनी निजी है। इसमें संदेह नहीं कि वे अपने समय के अन्यतम निबंधकार हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने हिंदी भाषा, व्याकरण, राष्ट्रभाषा आदि पर भी निबंध लिखे, किंतु इन निबंधों में भी शैली उनकी व्यंग्यात्मक ही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनिस्थिरता शब्द पर लिखे गए निबंध अपनी व्यंग्यात्मकता के लिए प्रसिद्ध हैं। माधव प्रसाद मिश्र 1871 से 1907। माधव प्रसाद मिश्र के निबंध भारतेंदु परंपरा के निबंध हैं, लेकिन ये उस परंपरा को आगे नहीं बढ़ाते। भारतेंदु में अपनी संस्कृति पर अंधानुराग नहीं है, वे उस पर खुले ढंग से विचार करते हैं, किंतु मिश्र जी एक धार्मिक घेरे में बद्ध होने के कारण वैचारिक न होकर भावात्मक हो जाते हैं। भावात्मक निबंधों में भाव कम और बाह्याडंबर अधिक है। एक उदाहरण लीजिए, जहाँ महामहा महीधर ढुलक जाते थे और अगाध अतल स्पर्शी जल था, वहाँ अब पत्थरों में दबी हुई एक छोटी सी सुशीतल वारीधारा बह रही है, जिससे भारत के विदग्ध जनों के दग्ध हृदय का यथा किंचित संताप दूर हो रहा है। जहाँ के महाप्रकाश के दिग्दिगंत उद्भासित हो रहे थे, वहाँ अब अंधकार से घिरा हुआ स्नेह शून्य प्रदीप टिमटिमा रहा है, जिससे कभी कभी भूभाग प्रकाशित हो रहा है। पाठक, जरा विचार कर देखिए, ऐसी अवस्था में यहाँ कब तक शांति और प्रकाश की सामग्री स्थिर रहेगी। उनका एक निबंध संग्रह निबंध माला प्रकाशित हो चुका है, गोविंद नारायण मिश्र 1859 से 1926 ईस्वी, अपनी विद्वता के लिए अधिक प्रसिद्ध है। प्राकृत विचार एक छोटा मोटा प्रबंध है, इसमें प्राकृत भाषा के उद्भव और विकास पर विचार किया गया है। विभक्ति विचार में विभक्तियों का व्याकरणिक विवेचन हुआ है। आत्माराम की टेंटे में अनस्थिरता शब्द को लेकर चलने वाले विवाद में द्विवेदी जी का पक्ष लिया गया है, किंतु जब मिश्र जी कवि और चित्रकार विषय पर निबंध लिखने लगते हैं तो तत्सम शब्दावली, उपमा रूपक के लदाव, सानुप्रास भाषा के प्रयोग आदि में विचार का पता लगना मुश्किल हो जाता है। सहज सुंदर मनहर स्वभाव छवि स्वभाव प्रभाव से सबका चित्त और सुचारु सजीव चित्र रचना चतुर चितेरा और जब देखता तभी अभिनय सब रस रसीली नित नव नव भाव बरस रसीली अनूप रूप स्वरूप गर्बीली सृजन जन मोहन मंत्र की कीली गमक जन का दिनक सहज सुहाते चमचमाते अनेक अलंकार श्रृंगार साज सजीली छबीली कविता कल्पना कुशल कवि। इन दोनों का काम ही उस अग जग मोहिनी बला की सुबल सबला स्वभाव सुंदरी अति सुकोमल अबला की नवेली अलबेली अनोखी छवि को आँखों के आगे परतच्छ सी खड़ी दर्शाकर मर्मज्ञ सुरसिक जनों के मन को लुभाना तरसाना सरसाना और रिझाना ही है। अर्थहीन विशेषणों की लंबी कतार भाषा की झंकृति उन्हें निबंधकार नहीं रहने देती। इस काल की निबंध शैली के निर्माण में चंद्रधर शर्मा गुलेरी 1883 से 1920 ईस्वी का विशेष स्थान है। ये संस्कृत के विद्वान तथा भाषा के मर्मज्ञ थे। अल्प व्यय में ही जयपुर के समालोचक नामक पत्र अपने संपादकत्व में निकलवाया था। अपभ्रंश साहित्य की विशेषताओं की ओर उन्होंने पुरानी हिंदी नामक निबंध माला लिखकर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया था। उनके व्यक्तित्व में पांडित्य और सरसता का अद्भुत संयोग था। एक ओर वे भाषा जैसे नीरस विषय का पांडित्यपूर्ण सरस विश्लेषण करते हैं, तो दूसरी ओर मारिसी मोही कुठाव और कछुआ धर्म जैसे व्यक्तित्व व्यंजक चुटीली निबंधों की सृष्टि। आगे चलकर पांडित्य और सरसता का यह विरल संयोग हजारीप्रसाद द्विवेदी में दिखाई पड़ा। गुलेरी जी संस्कृत से पंडित होते हुए भी गोविंद नारायण मिश्र अथवा माधव प्रसाद मिश्र की तरह अपनी संस्कृति के अंध भक्त नहीं थे, इसीलिए अपने निबंधों में उन्होंने भारतीय संस्कृति की त्रुटियों को व्यंग्यात्मक ढंग से चोट करने की शैली में उद्घाटित किया है। व्यक्तित्व व्यंजक निबंधों में भी पांडित्य सर्वत्र है, पर आधुनिक जीवन से संबद्ध होने के कारण वह रचनात्मक हो गया है। इस रचनात्मकता के मूल में बदलाव की वह आकांक्षा है जो संस्कृति में ताजगी और निखार लाती है। एक उदाहरण देखिए, पर ईरान के अंगूरों और गूलों का मजबूत पहाड़ की सेमलता का चस्का पड़ा था, लेने जाते तो पुराने गंधर्व मारने दौड़ते। हाँ, उनमें से कोई उस समय का चिलकौवा नकद नारायण लेकर बदले में सोमलता बेचने को राजी हो जाते थे। उस समय का सिक्का गौवें थी, जैसे आजकल लखपति करोड़पति कहलाते हैं वैसे तब सतगु सहस्रगु कहलाते थे। ये दमड़ी मल के पोते करोड़ी चंद अपने नवग्वा दसग्वाह पितरों से शर्माते न थे, आदर से उन्हें याद करते थे। आजकल के मेवा बेचने वाले पेशावरियों की तरह कोई कोई सरहदी यहाँ पर भी सोम बेचने चले आते थे। मूल ठहराने में बड़ी हुज्जत होती थी, जैसा कि तरकारियों का भाव करने में कुंजड़ीनों से हुआ करती। वे कहते सोम बेच दो, वे कहते हैं वाह, सोम राजा का दाम इससे कहीं बढ़कर है। इधर ये गौ का गुड़ बखानते पर काबुली काहे को मानता। उसके पास सोम की मनोपली थी और इनका बिना लिए सरता नहीं। अंत में गौ को एक पाद अर्ध होते होते दाम तय हो जाते। भूरी आंखों वाली एक बरस की बछिया में सोम राजा खरीद लिए जाते, गाड़ी में रख कर शान से लाए जाते। सरल और बोलचाल की भाषा का व्यवहार इसलिए करना पड़ा कि लेखक को नई जमीन तोड़नी थी। बंधी हुई शब्दावली में बंधे हुए विचार ही व्यक्त हो पाते हैं। सोम के प्रसंग में करोड़ी मल और मनोपली जैसे शब्द पूरे निबंध को अर्थ विस्तार देते हैं। बालमुकुंद गुप्त को छोड़कर शेष निबंधकारों के पास गुलेरी जी जैसी मूल्य दृष्टि नहीं थी, इसलिए उनकी शब्दावली में ऐसी प्रत्यग्नता भी नहीं दिखाई देती। गुप्त जी समसामयिक विषयों से उलझते रहे, किंतु गुलेरी जी ने अपने निबंधों में अपनी लंबी सांस्कृतिक विरासत को ग्रहण किया है, इसलिए विचारों की संकुलता उनमें अधिक है। किंतु इस परंपरा को नवीन जीवन बोध से जोड़ने के लिए जरूरी था कि वे देशज तद्भव और उर्दू के शब्दों का प्रयोग करते। शर्माना, चिलकौवा, सरता, शान, बछिया ऐसे ही शब्द हैं। सरदार पूर्ण सिंह 1881 से 1931 ने केवल 6 निबंध लिखे। सच्ची वीरता, कन्यादान, पवित्रता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम और अमेरिका का मस्त योगी वॉल्ट विटमैन। उनकी भावुकता, प्रेम, मानवतावाद और आदि को देखकर कुछ शोध ग्रंथों में कहा गया है कि हिंदी के निबंधकारों में सरदार पूर्ण सिंह का अंग्रेजी पर अंग्रेजी का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। पर उनके व्यक्तित्व का बहुत कुछ निर्माण स्वामी रामतीर्थ के भाषणों, रचनाओं, आचार विचार से हुआ। रामतीर्थ उनके गुरु थे। गुरु की सहजता, पवित्रता, मानवीयता आदि ही उनके संबंधों में अपने ढंग से अवतरित हुई है। सच्ची वीरता सिंह जी के कार्लाइल की अत्यधिक प्रशंसा की है। इमर्सन के एक निबंध आन हीरोइज्म का प्रभाव भी इस पर दिखाई पड़ता है। कार्लाइल का उल्लेख आचरण की सभ्यता में भी मिलता है, मजदूरी और प्रेम में रस्किन का। अन्य निबंधों पर टॉल्स्टॉय, थोरो आदि के प्रभावों को देखा गया है। वस्तुतः साहित्य की रचना इधर उधर के प्रभावों पर नहीं होती। भावात्मक निबंध तो बहुत कुछ लेखक के व्यक्तित्व को प्रतिफलित करता है। स्वयं रामतीर्थ के भाषणों में इमर्सन, कार्लाइल, टॉल्स्टॉय, विटमैन, थोरो आदि का जगह जगह उल्लेख हुआ है। यदि स्वामी रामतीर्थ के भाषणों और सरदार पूर्ण सिंह के निबंधों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो सिंह जी पर रामतीर्थ का ही प्रभाव परिलक्षित होगा। रामतीर्थ के प्रभाव में आकर उनकी मानवता में विशेष उदारता, नवीनता, भावकुलता आ गई है। पापपुड़ी की पुरानी परिभाषा बदल गई है। एक उदाहरण देखिए, हल चलाने और भेड़ चलाने वाले प्रायः स्वभाव से ही साधु होते हैं। हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन किया करते हैं, खेत उनकी हवनशाला है। उनके हवन कुंड की ज्वाला की किरणें चावल के लंबे और सफ़ेद दानों के रूप में निकलती है। गेहूं के लाल दाने इस अग्नि की चिंगारियों की डालियां हैं। मैं जब कभी अनार के फूल को देखता हूं तब मुझे बाग के मालिक का रुधिर याद आता है। इसमें रेहटारिक का मूलाधार हवन है। इसका लाक्षणिक प्रयोग उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना इसका संदर्पण। यह एक खास संदर्भ में प्रयुक्त होकर मेहनत कस लोगों के फलवान श्रम को उजागर करता है। इसी प्रकार अनार के फूल फल और माली के रुधिर वर्ण सादृश्य पर लट्टू होने वाले लोग केवल विशेषणों के आधार पर इसकी प्रशंसा करने में असमर्थ हैं। रुधिर शब्द पूरे प्रकरण को नई अर्थवत्ता से संपृक्त कर देता है। माली का रुधिर दृष्टा की यथार्थवादी दृष्टिकोण का सूचक है। यथार्थ पर आधारित होने के कारण उनकी भावात्मक शैली अर्थ गौरव से पूर्ण हो उठती है। पूर्ण जी के मौन व्याख्यान, अपवित्र पवित्रता, पापी में महात्मा और महात्मा में पापी डूबा हुआ है आदि विरोधाभासों की जरूरत चमत्कार के लिए नहीं, बल्कि ये अर्थ की जटिलता के लिए ले आए गए हैं। पापी में महात्मा कहकर वे दो निश्चित कोटियों में बटे हुए पापी और महात्मा की कोटियों को तोड़ना चाहते हैं। पद्म सिंह शर्मा, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, गणेश शंकर विद्यार्थी, यशोदानंद अखौरी, विजयानंद दुबे मिश्र बंधु, कृष्ण बलदेव वर्मा, स्वामी सत्यदेव परिव्राजक हरिओद, गंगा प्रसाद अग्निहोत्री, वेंकटेश नारायण तिवारी, काशी प्रसाद जायसवाल, कन्नोमल आदि इस काल के अन्य निबंधकार हैं। इनमें से कुछ तो आम के निबंध नाम के निबंधकार हैं, कुछ में चमत्कारी के अलावा निबंधकीय विशेषताएं नहीं हैं। प्रारंभिक काल में अपने सामान्य योगदान के कारण इनकी गणना निबंधकारों में कर ली जाती है। वस्तुतः इस काल के निबंधकारों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, भाषिक चमत्कार पैदा करने वाले लेखक, भाषा परिष्कार करने वाले लेखक और व्यक्तित्व व्यंजक निबंधकार। पहले दो श्रेणियों के लेखक जमीन तैयार करने की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण हैं। इस युग के वास्तविक निबंधकार चार ही हैं, श्याम सुंदर दास, बालमुकुंद गुप्त, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और सरदार पूर्ण सिंह। श्याम सुंदर दास का महत्व भी इतिहास की दृष्टि से ही है, क्योंकि उनकी परंपरा में शुक्ल जी ऐसे श्रेष्ठ निबंधकार पैदा हुए। ये तीन निबंधकार गुप्त, गुलेरी, सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। विषय वस्तु की दृष्टि से भी और भाषा शैली की दृष्टि से भी भारतेंदु युग आंदोलनों का युग था। धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन पर इनका स्वरूप ठीक ठीक स्पष्ट नहीं हो सका था, अतः उनमें पुरानेपन और नवीनता, राजभक्ति और देशभक्ति का द्वंद्व आड़े आता है। अब स्थिति बदल गई थी। गुप्त जी चोट करने में किसी प्रकार की रियायत नहीं करते थे। विदेशी सत्ता पर हमला करने में जो शैली उन्होंने अख्तियार की, वह उनकी मूल्य दृष्टि और पत्रकारिता की देन है। गुलेरी जी इस युग के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार हैं। बालकृष्ण भट्ट, जिसे सहृद संगोष्ठी, संलाप, घरेलू बातचीत आदि कहते हैं, वह गुलेरी जी में संजीदगी और जिंदा दिली से प्रकट हुई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसी परंपरा में आते हैं, पर गुलेरी जी की चोट भारतेंदु युग में की जाने वाली चोट की अपेक्षा गहरी और जटिल है। आलोचना। आधुनिक हिंदी साहित्य में आरंभ से ही दो प्रकार की प्रवृत्तियां दिखाई पड़ती हैं, स्थूल नैतिकतावादी और रीतिवादी। पहली में मोटे भारतीय आचार विचार की परंपरा और नए भौतिकवाद दृष्टिकोण का मिला जुला रूप है, तो दूसरी में मोटी काव्य शास्त्रीय दृष्टि, नैतिकतावादी दृष्टि साहित्य में सामाजिक उपयोगिता और नैतिक शिक्षा की तलाश करती थी, तो रीतिवादी दृष्टि स्थूल गुण दोष की। इन दोनों दृष्टियों का परिचय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा की गई संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा में देखा जा सकता है। इसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। बालकृष्ण भट्ट ने उसी पुस्तक की आलोचना व्यापक दृष्टि से की थी, किंतु उसकी ओर कम लोगों का ध्यान गया। नैतिकता के आग्रह के कारण महावीर प्रसाद द्विवेदी को मेघदूत पसंद नहीं आया था, पर जब उन्होंने उसमें नैतिक मूल्यों की खोज निकाला तो अपने मत को संशोधित कर लिया। कालिदास की निरंकुशता, कालिदास की विद्वता, मेघदूत रहस्य, प्राचीन कवियों के काव्यों में दोषोद्भावना आदि निबंधों की श्रेष्ठता उनमें प्राप्त होने वाले नैतिक आनंद पर निर्भर है। उनकी दृष्टि में उत्तम काव्य वही है जिससे संसार का उपकार साधन हो। इसी दृष्टिकोण के कारण मेघदूत की अपेक्षा रघुवंश को उन्होंने अधिक श्रेष्ठ काव्य माना है। काव्यगत चरित्रों को वे देशकाल की विशेषताओं से समन्वित होना आवश्यक समझते थे। द्विवेदी जी अपने समय के सबसे अधिक उदार और प्रगतिशील आलोचक हैं। उन्होंने अलंकारों की कलाबाजी और समस्या पूर्ति तथा नायिका भेद के खिलवाड़ का विरोध किया। पूर्व प्रचलित छंदों के घेरे को तोड़कर उनके स्थान पर नए नए छंदों के प्रयोग का आग्रह किया। भाषा के संबंध में उन्होंने लिखा है कि वह बोलचाल के निकट की भाषा होनी चाहिए। काव्यगत शब्दों के विषय में उनका कथन आज के अर्थमीमांसकों के निकट मालूम पड़ता है। कविता को प्रभावोत्पादक बनाने के लिए उचित शब्द स्थापना की भी बड़ी जरूरत है। किसी मनोविकार के दृश्य के वर्णन में ढूंढ ढूंढ कर ऐसे शब्द रखने चाहिए जो सुनने वालों की आंखों के सामने वर्ण विषय का चित्र सा खींच दे। इसलिए कवि को चुन चुन कर ऐसे शब्द रखने चाहिए और इस क्रम में रखने चाहिए जिससे उसके मन का भाव पूरे तौर पर व्यक्त हो जाए। आश्चर्य होता है कि द्विवेदी जी ने काफी पहले काव्य के संदर्भ में शब्द क्रम का उल्लेख किया। अपनी व्यवहारिक समीक्षा में विक्रमांक देवचरित चर्चा, नैसत चरित चर्चा और कालिदास की निरंकुशता पुस्तकों में कवि की अंत प्रकृति की छानबीन तो नहीं मिलती, पर उन सभी बातों का उल्लेख मिलता है जिन्हें शुक्ल जी की आलोचना की भूमिका कही जा सकती है, जैसे नैतिकता का आग्रह, लोक मंगल की भावना, अलंकृति और निर्दिष्ट रूढ़ियों का विरोध। भाषागत काट छाट में लगे रहने तथा समीक्षात्मक अभिनिवेश के अभाव में उनकी आलोचनाओं में गहराई नहीं है, यह सच है, परंतु वे पहले आलोचक हैं जिन्होंने मिश्र बंधु के हिंदी नवरत्न की आलोचना करते समय कवियों के उत्कर्षाकर्ष के निर्णयात्मक प्रतिमानों की मांग की। अपने समय में प्रकाशित पुस्तकों की छोटी छोटी समीक्षाएं भी उन्होंने लिखी। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद और हिंदी नवरत्न में समीक्षा का जो स्वरूप खड़ा किया उससे हिंदी आलोचना का कोई खास लाभ नहीं हुआ। उन्होंने भाव पक्ष और कला पक्ष को एकदम असंबद्ध रूप से देखा। हिंदी नवरत्न में कवियों की जो कोटियां बनाई गई उनके पीछे कोई सिद्धांत नहीं है। भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों का निरूपण निहायत अर्थहीन है। देव के कला पक्ष का उद्घाटन देखिए। देव ने घनाक्षरियों सवैये से अधिक रची है। उत्तमता में भी वे सवैयों के न्यून नहीं है। उनकी कविता में पृष्ठ पर पृष्ठ पढ़ते चले जाइए, प्रायः कोई बुरा छंद न पाइएगा। इससे देव की कला का मौन का कौन सा पक्ष उद्घाटित होता है? उत्तमता और बुरा कहने से क्या तात्पर्य है? इस समय के सबसे विशिष्ट आलोचक पद्म सिंह शर्मा है। उन्होंने बिहारी की सत्सई नामक ग्रंथ में सत्सई की तुलनात्मक आलोचना की है। इनकी प्रभावात्मक शैली निश्चय ही आलोचना के उपयुक्त नहीं कही जा सकती, किंतु खेद है कि इसमें बहुत से शोधार्थियों को सार नहीं दिखाई पड़ता। यदि रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ही सामने रख लिया होता तो खुद प्रभावात्मक ढंग न अपनाते। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, आर्या सप्तशती और गाथा सप्तशती के बहुत से पद्यों के साथ बिहारी के दोहों का पूरा मेल दिखाकर शर्मा जी ने बड़ी विद्वता के साथ एक चली आती हुई साहित्यिक परंपरा के बीच बिहारी को रखकर दिखाया। किसी चली आती हुई साहित्यिक परंपरा का उद्घाटन भी साहित्य समीक्षक का एक भारी कर्तव्य है। नंद दुलारी वाजपेयी ने शर्मा जी के संबंध में लिखा है, रीति काव्य में जो शर्मा जी के समय में प्रचलित काव्य प्रवाह था, रीतिबद्ध श्रृंगारिकता तो थी ही, रचना कौशल का भी पूरा योग था। शर्मा जी ने श्रृंगारिकता को छोड़कर रीति काव्य के दूसरे गुण निर्माण कौशल को अपनाया, उसी की छानबीन की। शर्मा जी के समय के साहित्यिक निर्माण में रचना कौशल की कमी थी। कदाचित इसीलिए शर्मा जी की समीक्षा का मुख्य आधार काव्य कौशल बना, जो सामयिक साहित्य स्थिति के सुधार में भी एक सीमा तक सहायक हुआ। वाजपेयी जी ने आगे कहा है कि काव्य शरीर के अंतर्गत भाषा, पद प्रयोग, उक्ति चमत्कार और चित्रण कौशल आदि आते हैं। इन्हीं की ओर शर्मा जी की दृष्टि गई। शब्दों, पदों आदि की अर्थ मीमांसा में शर्मा जी ने अपने पांडित्य और सूझबूझ का अच्छा परिचय दिया है। जगह जगह उन्होंने बिहारी का अनुचित पक्षपात करते हुए देव को नीचा दिखाया है, पर शब्दों की कारीगरी और उक्ति चमत्कार पर विशेष बल देने के कारण भाव के समग्र सौंदर्य की अपेक्षा हो गई है। लेकिन इससे इतना अवश्य हुआ कि काव्य के कलात्मक सौष्ठव की ओर लोगों का ध्यान गया, यह कम महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं है। अब हिंदी आलोचना में देव बिहारी में कौन बड़ा है और कौन छोटा है, इसको लेकर झगड़ा खड़ा हो गया। कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी नाम की एक आलोचनात्मक पुस्तक ही लिख डाली। मिश्र बंधुओं की तरह उनकी दृष्टि भी रीतिवादी है। यो शुक्ल जी ने बताया है कि उसमें जो बातें कही गई हैं वे बहुत कुछ साहित्यिक विवेचन के साथ कही गई हैं। नवरत्न की तरह यो ही नहीं कही गई हैं, पर न तो उसे विवेचन कहा जा सकता है और न साहित्यिक। विवेचन के नमूने के रूप में ये कुछ वाक्य देखे जा सकते हैं, धीरज से पृथ्वी पर चरण कमलों का रखना कितना मर्मस्पर्शी है, कोमलकांत पदावली की कमनीयता के विषय में हमें कुछ नहीं कहना है, उनकी समुज्वला उपमा प्रस्फुटित होती है, कथित विवेचन के बीच बीच यमक समुच्चय दृष्टांत आदि अलंकारों के उल्लेख को क्या साहित्यिक कहा जा सकता है। पुस्तक के भाषा अध्याय में भी प्रभाववादी ढंग से अपूर्व शब्द चमत्कार अनुप्रास स्वादीयसी सुधा संयोग ढूंढकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। शर्मा जी के पास शब्दों के अर्थगत वैशिष्ट को खोज निकालने की अद्भुत क्षमता थी, जो इस काल के अन्य व्यक्ति में नहीं पाई जाती। लाला भगवान दीन को देव को बड़ा कहा जाने कैसे अच्छा लग सकता था। वे बिहारी और देव पुस्तक लेकर आलोचना के अखाड़े में उतरे। उन्होंने मिश्र बंधुओं की बातों को काटते हुए कृष्ण बिहारी मिश्र का पूरा जवाब दिया। लाला जी की शैली अपेक्षायुक्त और बदले की भावना से अनुप्रेरित है। वे टीकाकार थे, आलोचक नहीं। अपनी लक्ष्मी पत्रिका में उन्होंने भारत भारती, जयद्रथ वध की समीक्षाएं भी लिखी, पर इन ग्रंथों में भी उन्हें छंदोभंग, यतिभंग आदि ही दिखाई पड़ा। रामचरित उपाध्याय के रामचरित चिंतामणि की समीक्षा करते समय भी उनकी रीतिवादी दृष्टि को देखा जा सकता है। यह समालोचना का आरंभिक काल था। नए काव्यालोचन की ओर लोगों का ध्यान बहुत कम गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी की सैद्धांतिक आलोचनाओं में पुरानी रूढ़ियों का विरोध तथा नए प्रतिमानों का संकेत अवश्य मिलता है, पर उनमें आलोचना की मेधा और पैठ का अभाव था। शेष आलोचकों के उपजीव्य रीतिकालीन व श्रृंगारी कवि थे, इसलिए उनसे नई उद्भावना की आशा दुराशा मात्र थी। इस समय तक हिंदी की रचनात्मक उपलब्धियां भी कदाचित इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी कि आलोचना को नए मानों की ओर ले जाने के लिए बाध्य करती। फिर भी महावीर प्रसाद द्विवेदी और पद्म सिंह शर्मा के प्रभाव को शुक्ल जी की पीढ़ी इनकार नहीं कर सकती। इस प्रकार अध्याय 4 पूर्व स्वच्छंदतावाद काल यहीं पर समाप्त।